السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، آج ہمارے سفر میں ہم تقریباً سورت البقرہ کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں. انشاءاللہ و تعالی ایک سبق اور رہ گیا اور آپ کی یہ سورہ مکمل ہو جائے گی. قرآن کی کہان اور پورے قرآن کی جو سمری ہے وہ آپ انشاءاللہ و تعالی پوری کر لیں گے. جب بھی آپ بیٹھیں پڑھنے کے لیے تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھا کریں، بہت بڑا. بہت ساری چیزیں ٹھیک چلتی ہیں تو آپ بیٹھتی ہیں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اس کو اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھیں، ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھیں. جیسے کہیں لکھا ہوتا ہے نا، سنہری موقع یا خوش قسمتی، یہ سمجھیے. کیونکہ قرآن کریم کا سیکھنا ایک آنر ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا آپ کے دل کو مائل کر دینا اور آپ کو صحت، تندرستی، عافیت، امن و امان، اور ہر چیز چلتی بھی انٹرنیٹ سے لے کر، اور بہت ساری چیزیں، لائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، اور آپ کا کمپیوٹر یا فون یا جو بھی جو گیجٹ آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، آپ کو آکسیجن مل رہی ہے، آپ کو آپ کے ہر طرف خیریت ہے، تب آپ بیٹھتے ہیں. پلس آپ کا دل بھی مائل ہوتا ہے تو آپ بیٹھتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے، بڑا اس کا احسان ہوتا ہے. تو بہت اس پہ شکر ادا کیا کیجئے، کیونکہ انسان کے تو کسی چیز پہ بس نہیں ہے. کوئی چیز بھی اگر ان میں سے آگے پیچھے ہو جائے تو ڈومینو ایفیکٹ ہے، سب چیزیں ہی خراب ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو مانیے، اور دل کے جھکاؤ کے ساتھ جب آپ قرآن کی طرف آتی ہیں تو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ جیسے بہت زیادہ ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، اور اس کو ایک واقعی بلیسنگ سمجھتے ہیں. کیونکہ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ اچھے بھلے چلتے چلتے پھر ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، اچھا بھلا سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کدھر گم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، اور اس کی قدر ہمیں کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. قدر کریں اس کی، قدر. اس کو ایسے فالتو نہ سمجھیں، یا اس کو جسٹ ایک کلاس نہ سمجھیں، یا اس کو جسٹ ایک فارغ وقت کا مشغلہ نہ سمجھیں، یا بس ایسے کیجول نہ لیں اس کو، جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو کیجول لیتے ہیں. کیونکہ سیکھتے سیکھتے کہیں ایک دن ایسے بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں کہ بڑی کوئی بات ہے، بس ہاں ہم کرتے ہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وقت جو آپ اس کے لیے بیٹھے ہیں یہی کام آ جانا ہے. باقی ہر وقت جو آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ہسل بسل، کہیں کھانے، کہیں پینے، کہیں دعوتیں، کہیں نوکریاں، کہیں گھر کے جھنجٹ، کہیں اور کئی چیزیں، مسئلے مسائل، وہ سب پیچھے رہ جائیں گے. यही है जो काबिले कदर टाइम है, यही है जो आपने बचा लिया अपनी जिंदगी में से, तो इसकी कदर जानिए और कदर कीजिए। चलते हैं आज की आयत की तरफ। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 282 और 283 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दो ही आयत हैं, तो देखते हैं लफ्जी तर्जुमा। देखें आज दो आयतें हैं ना, तो आपके दिल को सिर्फ तसल्ली सी हो गई होगी कि दो ही आयतें हैं, लेकिन माशाल्लाह वो 281 ही काफ़ी, 282 ही काफ़ी लंबी है। तो कभी कभी ऐसा सबक भी होगा कि मैं बहुत सारी आयतें, मसलन 30 आयात करवाऊंगी, 35 आयात कराऊंगी, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी होंगी कि वो सिर्फ 1.5-2 रकू में आ जाएंगी। तो कभी आयात का नंबर सुन के घबराइएगा नहीं, ठीक है? या अय्युहल्लदीन आमनू, या हरफे निदा, अय्युहल्लदीन आमनू, जो लोग ईमान लाए हो, ईजा, जब ईजा जब भी आएगा तो आगे होगा, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, जब मैं आऊंगी, तो ये अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, जब मैं आऊंगी तो क्या, तो फिर मैं तुमसे मिलूंगी, तो के बाद आप फिर अगली बात करते हैं। तो आप यहां पे भी देखेंगे कि जब तदायन तुम तदायन तुम दयीन से है, तुम बाहम, बाबे तफाउल है ना, तो आपस में कुछ करने की बात हो रही है, दायन तुम बाहम लेन देन करो, तुम बिदयिन कर्ज का, दैन कहते हैं हर वो हक जो किसी के जिम्मे हो दूसरे का, उसको दैन कहते हैं, और इसके अंदर कर्ज भी आ जाता है। यानी कि दैन एक ब्रॉडर टर्म है, उसको इंशाल्लाह हम तफसीर में देखेंगे। इला अजल मुसम्मा, अजल मुद्दत, मुसम्मा मुकर्रर, या तयशुदा मालूम। अब यह फा, फा किसका जवाब है, इदा का, फक्तुबू, फक्तुब वाहिद हुआ, फक्तुबू जमा, तो लिखा करो हु उसको, हु की जमीर किस तरफ जा रही, पीछे देखें दईन की तरफ, वल यक्तुब, वल वा और ये लाम जो है साकिन, इसको कहते हैं लामे अमर, क्या कहते हैं लामे अमर, लाम आपने बहुत तरह का देखा है, इस तरह से जब स्टार्ट में साकिन आ जाए तो उसको लामे अमर कहते हैं, यानी कि चाहिए के, लाजिम है के, वाजिब है के, इस तरह के आप तर्जुमे करेंगे, ज्यादातर आप चाहिए है लिख दें तो काफी हो जाएगा। चाहिए है यकतुब के लिखे, ये क्या है, यकतुब यानी कतबा से, कतबा कहते लिखने को, किताब भी उसी से है, लिखी हुई चीज, बैनकुम दरमियान तुम्हारे। अच्छा पहले आया था फक्तुबूहू, तो वो जमा था, अब ये है यकतुब यानी चाहिए कि लिखे कौन, कातिब, कातिब लिखने वाला, बिल अदल साथ अदल के, वाला और ना, या अबा वस्तकबरा आपने पढ़ा था इसी सूरत में, अगर आप पिछले जो वर्ड्स हैं उनको याद रखेंगे, जितने आपके पक्के तर्जुमे होंगे उतना ही आप देखेंगे आपको आगे इतनी आसानी होगी। तो ये ना किया करें कि ग्रुप से पहले बस जरा सा देख लिया और बस चल चलाओ वाला काम किया, इसको दोहराते रहें, आप जितना दोहराएंगे वो लफ्ज पक्का होगा, क्योंकि आगे जाके वो ही अल्फाज रिपीट होंगे, मे भी किसी और फॉर्म में आ जाए, वहां पे अबा वस्तकबर आया था जब शैतान की बात आई थी कि शैतान ने क्या किया, इनकार किया और तकबर किया, अब या अबा वो ही वर्ड है इनकार, तो अगर आपका वो पहला वर्ड पक्का था पहले पारे में, तो तो फिर अब आपको यहां पे आसानी होगी। तो इसलिए आप हर दिन अपने तर्जुमे को जो आपने पढ़ा होता है उसको आपने दोहराना है, हर दिन एक दफा बस दोहरा लिया करें। या बा इनकार करे कातिबुन, कातिब कौन होता है, लिखने वाला। अन के यकतुबा, वो लिखे। कमा जैसा के, अल्लामा हु अल्लाह, अल्लामा मैंने आपको बताया था पहले भी, इल्म से ही है ये, लेकिन जब इसके ऊपर लाम पे तशदीद आ जाए तो सीखने सिखाने का कुछ माना होगा। अल्लामा सिखाया, हु उसको, किसने, अल्लाह ने, हा के ऊपर पेश है ना, तो फाइल कौन है, अल्लाह ताला। फल यकतुब, अब ये भी लाम कौन सा है, लामे अमर, बस चाहिए के यकतुब वो लिखे। वल युमलिल, और यहां पे भी लामे अमर, और चाहिए के युमलिल इमला से है, इमला कराना, डिक्टेट कराना, इमला उर्दू में भी लफ्ज बोलते हैं, चाहिए कि इमला कराए। अल्लदी, वो जो, अलैहि, उस पर, अलहक को, हक है, और आप ब्रैकेट में लिख दें जो कर्जदार है या मकरूज है, जिसके जिम्मे कर्ज देना है। वल यत्तकिल्ला, और लाम में कौन सा है, अमर, चाहिए के यत्तकिल्ला डरे अल्लाह से। और रब्बहू, जो रब है, हु उसका, किसका, पीछे किसकी बात आ रही, अल्लदी अलैहिल हक, यानी जो मकरूज है। वला, और ना, यबखस, कमी करे वो, मिन से, हु उस, शय अन, किसी चीज की। फ फिर, इन अगर, काना हो, अल्लदी वो शख्स, यानी उसी की बात हो रही है जो मकरूज था, अलैहि ऊपर उसके, अलहक हक है, सफीहन सफी हो। अब सुफहा आपने शुरू में जब पहला पाराई स्टार्ट ही हुआ था तो आपने सुफहा की बात पढ़ी थी, बेवकूफों की तरह, जो मुनाफिक कहते थे कि हम क्या बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आ जाएं। तो सफी कौन होता है, जिसकी अकल कम हो, बेवकूफ। औ या दईफन, कमजोर। औ या, औ का जो माना होता है वो या का होता है। ला नहीं, यस्ततियु, वो इस्ततात रखता, अन के, युमिल्ला, वो इमला कराए, हुआ वो, फल युमलिल, अब फिर लामे अमर आ गया, लाम साकिन यहाँ पे शुरू में फिर से है, बस चाहिए के इमला कराए, वली यू हु, वली हु उसका, वो कौन है, ये जमीर पीछे किस तरफ जा रही, उसी की बात हो रही है, अल्लदी अलैहिल हक, जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवा दिया, जो कर्जदार है। वस्तशहीदू, और वस्तशहीदू, गवाही तलब कर लिया करो, जब शुरू में सीन और ता आ जाए तो तलब करने का माना होता है, यानी गवाह बना लिया करो, तलब कर लिया करो, ये बाबे इस्तेफाल से है, तो इसके अंदर फिर तलब का माना है, जैसे इस्तेफार है, तौबा मांगना, तौबा करना। गवाह बना लिया करो शहीदैन, और यहाँ पे अमर है ना, गवाह बना लिया करो शहीदैन, दैन आइन की जब आवाज आए तो दो का माना है ना, शहीद एक है, शहीदैन दो है, और शुहदा इसकी जमा है, तो दो गवाह, मिन से, रिजालिकुम, रिजाल रजुल की जमा है, रिजाल, रजुल कौन होता है, मर्द, आदमी, रिजाल यानी जमा मर्दों, कुम तुम्हारे, यानी अपने मर्दों में से। फ इन, फिर अगर, लम ना यकूना, वो दो हों, क्योंकि अलिफ एंड में आ रहा है, यकूना आपने तो पहले पढ़ा हुआ है बगैर अलिफ के, लेकिन अब अलिफ भी आ रहा है, इसका मतलब दो की तरफ इशारा है, वही जो पहले बात हुई है, वो दो हों, रजुलैन, ये भी देखें, जैसे शहीदैन इसी तरह रजुलैन दो मर्द, फरजुलन तो एक मर्द, जैसे मैंने आपको बताया रिजाल इसी की जमा है, वम्रअतानी, आनी की भी आवाज जो है जब एंड में आए तो वो दो के लिए होती है, इम्रअतुन एक औरत और इम्रअतान दो औरतें, ऐन और आन दोनों ही दो के लिए होते हैं। दो औरतें, मिम्मन, मिन और मन दोनों जुड़ गए, मर्ज हो गए, मिन मन करना मुश्किल था तो मिम्मन ये आसान है, मिन से मन जो, उसमें से जो, तरदौना राजी होने से, रजा से कि तुम जिस पे राजी होते हो, तुम पसंद करते हो, मिन शुहदाई शहीद की जमा, शुहदा गवाहों में से, अन के, तदिल्ला भूल जाए, दौद लाम लाम, देखें दौल लीन हम पढ़ते हैं ना गुमराह होना, तो गुमराही भी क्या है, भूल जाना, रास्ता गुम कर देना, एहदाहुमा, अहद को क्या होता है, एक, हुमा कि एक आपने हुम की जमीर पढ़ी है, हुमा जो है वो दो के लिए है कि अलिफ एंड में, तो एक उन दोनों में से, अहद जो एहदा एक के लिए और हुमा दो, दोनों, तो उन दोनों में से एक, फतु जकीरा, तजकीर क्या होता है, याद दहानी कराना, रिमाइंड करवाना, फ तो तुजक्किर याद दहानी करा दे, एहदाहुमा एक उन दोनों में से, अल उखरा दूसरी को, वला और ना या अबा इनकार करे, करें, अशुहदा गवाह, ईदा जब, माँ, अच्छा माँ जो यहां पे है ना इसको कहते हैं माँ जायदा, ये क्या फायदा देता है, इसका माना आपने जो का नहीं करना बल्कि ये ताकीद का माना देता है, जैसे कि हम कहते हैं एक मैं कहूं कि जब मैं आऊंगी और दूसरी मैं कहूं जब भी मैं आऊंगी, तो इसके अंदर जोर पड़ गया, तो ईजा के बाद माँ का मतलब यही है कि जब भी, दुऊ, अब ये मजहूल है, दआ तो आपने पढ़ा होगा होगा, और दुऊ वो बुलाए जाएं, दुआ भी इसी से है ना, तो आप पुकारते हैं, वला तसअमु और ना तुम, तसअमु सीन हमजा मीम, ये आपके लिए नया वर्ड है जो उकताहट के लिए, काहली के लिए, सुस्ती के लिए आता है, यानी आसान लेना किसी चीज को, कैजुअल लेना, सहल उसमें बरतना, तो तसअमु तुम सुस्ती करो, अन के, तक तुबूहु तुम, कतबा से ही है, लिख लो, हु उसको, ये क्या है, मुजारे है, और क्या है, वाहिद है, जमा है, जमा है, सगीरन छोटा हो, औ या कबीरन बड़ा हो, इला तरफ, अजल ही, अजल मुकर्रर मुद्दत को कहते हैं, मुकर्रर वक्त के, ही उसके, किसके, जो भी दैन की बात हो रही है, ज़ालिकुम इसम इशारा है, इशारे किए, ये बात, अक्सतु, अच्छा अब ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अकबर असगर, जैसे यहाँ पे अक्सत आया तो जब भी ऐसे आएगा, इस मतमुत है ज्यादा, इसको कहते हैं इसम तफदील का सीगा, यानी जैसे हम कहते हैं ना ये उससे भी बेटर है, ये भी उससे ज्यादा बेहतर है, तो इसमें जब आप माना करेंगे तो इस तरह से माना किया जाएगा, अकसतु जैसे आ गया, अकवामु आ गया, अदना आ गया, ये सारे इसम तफदील है, अकसतु ज्यादा इंसाफ वाली है, इंदल्ला किस्त होता है ना इंसाफ, वह अकवामु और ज्यादा दुरुस्त रखने वाली है, क्योंकि जो इंसान कयाम भी करता है वो भी इसी से है, वो इंसान खड़ा होता है सीधा होता है ना, तो ज्यादा सीधी है यानी ज्यादा दुरुस्त है, ली शहादती गवाही के लिए, व अदना और ज्यादा करीब है, अल्ला अन और लाए नफी दोनों मिल गए, के ना तरताबू, तरताबू अपने, आपको लग रहा होगा ये नया वर्ड है लेकिन ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा स्टार्ट ही हुई थी तो रईब का लफ्ज आया था, तो उसी से है ये, तरताबू असल में तरताबून था, लेकिन नून गिर गया तो रईब से ही आप देखें तुम शक में पड़ जाओ। इल्ला मगर अन के तकूना हो, तिजारतन तिजारत, हाजिरतन हाजिर, यानी हाजिर तिजारत का मतलब क्या होता है, नकद, एक इस हाथ ले उस हाथ दे। तू दी रूना हा, तू दी रूना दौर से, दौर होता है ना गर्दिश करना, कोई दायरा भी उसी से होता है, किसी चीज का दौर करना। तो तू दी रूना हा, तुम लेन देन करते हो, यानी लेते देते रहते हो, लेते देते रहते हो हमेशा। हा उसको, उसका बईना दरमियान, कुम तुम्हारे आपस में, यानी फलई सा, तो नहीं आलई कुम तुम पर जुना हूं कोई गुना, अल्ला अन और ला के ना तक चुबू तुम लिखो हा उसको, व अशहीदू और गवाह बना लो, ये सारे अमर के सीगे हैं। इजा जब तबाया तुम बाहम बई, कहते हैं ना तिजारत को बई शरा, और जब मैंने आपको बताया कि इस तरह बाबे तफाउल से आ जाए तो आपस में करने का माना आता है, तो अलिफ आ गया ना बीच में, तबा या तुम आपस में खरीदो फरोख्त करो। वला युदौरा और ना जरर पहुंचाया जाए कातिब, वला शहीद और ना गवाह। युदार क्या है, ये है मजहूल, जरर पहुंचाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरी इसकी किरात में या दौर ये इस तरह से भी पढ़ा गया, और दोनों किरात में थोड़ा थोड़ा सा माने में फर्क आ जाता है जिसको हम देखेंगे तफसीर में। वह इन और अगर तफालू तुम करोगे, फ इन्ना तो बेशक हु वो फुसूकुम बिकुम, फुसूक फिस्क से गुनाह होगा, बिकुम तुम्हारे लिए, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, युअल्लिमुकुमुल्लाह अल्लाह सिखाता है तुमको, आप देखिए यहाँ पे भी सिखाने का माना, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। व इन और अगर कुन तुम हो, तुम आला सफर इन सफर पर, वलम तजीदू और ना तुम पाओ कातिबन कातिब, फ तो रेहानुन, रेहान मतलब रहन रखना, आप उर्दू में भी बोलते हैं, गिरवी रखना है, मकबूदा कब्जे की हुई का, जैसे आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, जिस पे कब्जा किया हुआ है। फ इन फिर अगर अमीना यानी अमीन जाना, एतबार एतमाद है, बादुकुम बादन तुम में से बाज को बाज का, फल यू अद्दी, अब यहां पे भी लाम कौन सा है, अमर का, तो चाहिए के अदा करे, अल्लदी वो शख्स जो, उतुमीना अमीन बनाया गया, अमन से यही है, अमानत हूँ अमानत उसकी, वलयत्तकिल्ला और चाहिए के डरे अल्लाह से, रब्बा हूँ जो रब है उसका, वला तक तुमु और ना तुम छुपाओ, अब इसको आप पहचानना शुरू कर दें इस तरह से कि अमर ऐसे आता है जब सामने वाले को ऑर्डर किया जाता है, तो ला तक तुमु ना तुम छुपाओ, यानी और जमा भी है, शहादत को गवाही को, वमन और जो कोई, यक तुम हा छुपाएगा हा उसको, किसको, हा की एक तो जमीर मुअन्नस की है, ठीक है ये हमें पता चल गया, हु नहीं है हा है, किसको छुपाएगा, शहादत को, फ तो इन्ना बेशक हु वो आसिम, इस्म कहते हैं गुनाह को, और आसिम गुनाहगार, ये आसिम नहीं है, आसिम नाम रखते हैं हम, और ये है आसिम गुनाहगार, कल्बुहु कल्ब दिल हु उसका, वल्लाहु बिमा तअमलूना और अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो, अलीम खूब जानने वाला है। मैंने आपको अलीम कब बताया था कि जैसे अलीम रहीम कदीर, ये सारे वो अल्फाज हैं जो इस पैटर्न के ऊपर जब आएंगे तो ऑलवेज आपने याद रखना है, इसके अंदर तसलसल होता है कि हमेशा और ज्यादा भी बहुत और हमेशा ये सिफत है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 और 283। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब कर्ज दिया जाए तो उसके अंदर सूद ना हो, और हमने ये भी देखा कि कर्ज देने में और उसके मुतालबा करने में आसानी की जाए, और हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी नादार पे आसानी करेगा या उसको माफ कर देगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की गर्मी से बचा लेगा। इतना बड़ा ये काम है कि किसी को अगर कोई आसानी कर देता है कि उसने कर्जा वापस करना है, उसको दिया हुआ वो नहीं दे पा रहा, मुश्किल हो रही है, तो ये उसके लिए आसानी कर दे या उसको माफ ही कर दे। अगर आप इतने रिच हैं, आपको इतनी फर्क नहीं पड़ता, तो माफ कर दें तो अल्लाह ताला आपको जहन्नुम की गर्मी से निजात दे देगा। और बल्कि ये भी एक जगह फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो किसी मुफलिस शख्स पे रहम करके अपने कर्ज की वसूली में इस पे सख्ती नहीं करता, अल्लाह ताला भी उसके गुनाहों पर उसको नहीं पकड़ता यहां तक कि वो तौबा कर ले। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बड़ी तरगीब हमें दी गई कि जब हम कर्ज दें तो आसानी करें। तो इसका मतलब है कि कर्ज लेना देना ये चलता रहता है माशरे में, इंसान जरूरतमंद है, कर्ज देंगे भी, कभी मुतालबा भी होगा इसका, तो उसमें किस तरह से हमें चलना है वो हमने देखा कि सूद नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी और क्या चीजें हैं जो इंसान को एहतियात करनी जरूरी हैं और जो मद्देनजर रखनी चाहिए कर्ज देते लेते वक्त, वो हमें आज इस आयत में पता चलेंगे। इस आयत को कहते हैं आयते दईन, क्योंकि आपने इसमें देख लिया ना विदईन, तो इस आयत को आयते दईन कहा जाता है और ये कुरान की सबसे लंबी आयत है। सबसे अजीम आयत कौन सी है कुरान करीम की? बाज लोग कहते हैं सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है। नहीं, सबसे बड़ी आयत नहीं है वो, ये आयते दईन है जो सबसे बड़ी आयत है, यानी लंबाई के लिहाज से। वो क्या है? अजीम तरीन आयत, सबसे शान वाली आयत, मर्तबे वाली आयत आयतल कुर्सी है। एक जगह आपका इंक्विज हो रहा था तो मैंने सुना वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे अजीम सूरा कौन सी है? सूरतुल फातिहा। सबसे मुख्तसर आयत कौन सी है? सूरह मुदस्सिर की सुम्मा नज़र आयत नंबर 21। ठीक है, उसमें सिर्फ 6 लेटर्स हैं। और ये आयत ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला के हकूक की बात नहीं हुई, कोई ऐसे नमाज रोजे इसकी बात नहीं हुई, बल्कि बाहमी ताल्लुकात की बात हुई है, कि बंदों के आपस के ताल्लुकात। और इससे हमें पता चला कि हमारा दीन इस्लाम कितना मुकम्मल दीन है, कि उन कामों में भी हमारी रहनुमाई करता है जिनका ताल्लुक हमारे आपस के मामलात के साथ है। और एक मामला ऐसा है जिसमें बहुत आपस की जो ताल्लुकात है उनके खराब होने का अंदेशा होता है। अल्लाह सुबहाना व ताला इस कदर मेहरबान है अपने बंदों पर कि ऐसे मामलात जिनसे उनके आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं उनके बारे में इस कदर वाजे और ऐसी बातें हमें, ऐसे कवानीन, ऐसे असूल हमें बता दिए कि जिनसे हम ऐसी चीजों से बच सकते हैं, हालांकि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन अगर इन चीजों पर अमल ना किया जाए तो इंसान खुद नुकसान उठा सकता है या आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, दुश्मनियां बढ़ सकती हैं, नफरतें आ सकती हैं, अच्छे भले चलते चलते किसी के साथ ऐसे जो मामलात हो जाते हैं, खास तौर पे ये माली मामलात ऐसे होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अच्छे भले लोग एकदम से उनके दरमियान नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो आपको पता है माल वैसे ही एक फितना है, तो अगर इंसान इन असूलों को सामने रखते हुए फिर माली मामलात करेगा तो ऐसे कई बदमजगियों से, नफरतों से और कई जो ताल्लुकात की खराबी है उससे बच सकता है। तो लिहाजा ये इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे तरीके से समझनी है। अब देखें एक आयत है मगर काफी लंबी है, इससे पता चलता है कितनी डिटेल में ये सारा कुछ बताया गया। देखते हैं आयत को, आयत नंबर 282। माशाल्लाह आज आप कुरान की सबसे तवील तरीन आयत को देखने जा रहे हैं। या अय्युहल्लदीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। सबसे पहली बात तो ये कि ईमान वालों को कॉल दी गई है, सुन लो ईमान वालों। ईमान वाले कौन होते हैं? जिनका ईमान अल्लाह ताला पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, आखरत पर और तकदीर पर होता है। ये छह चीजें ईमानियात कहलाती हैं, और इनके ऊपर सिर्फ जुबानी ईमान नहीं रखना होता कि जुबानी जुबानी ऊपर ऊपर से कह दिया मैं सारी चीजों को मानता हूं। जब इनकी डिटेल आती है तो डिटेल में भी हर हर चीज को मानना ये ईमान का तकाजा है, तभी आप हकीकी मोमिन बनते हैं। मसलन कुरान कहता है कोई बात, मिसाल के तौर पे चोर मर्द हो या औरत हो उसका हाथ काट दो। अब कोई उठ के कहे नहीं जी ये तो जालमाना सजा है, अस्तगफिरुल्लाह, तो उसका ईमान इस आयत पर नहीं है, तो इसका ईमान तो कुरान पे ही नहीं है फिर। या कोई देखे कि विरासत में दो हिस्से भाई को और एक हिस्सा बहन को मिलता है तो वो इसके ऊपर एतराज करने लगे नहीं जी हम तो नहीं इसको मानते। जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तब पता चलता है किसका ईमान है, या आखरत पर ईमान, इसमें कब्र के जो हालात हैं उनका ही इनकार कर दे। कब्र में जो कुछ होना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से उसको बता दिया, उसका इनकार करना खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं ये नहीं मानता तो आखरत पर ईमान नहीं है उसका, या अल्लाह ताला की जो भी सिफात हैं उनका इनकार कर दे, उनमें से किसी एक सिफत का इनकार कर दे, तो उसका ईमान फिर वो मोतबिर नहीं है। तो इसलिए जब इनकी तफासील आए तो उनके ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है। जब ईमान वालों को कॉल दी जाती है तो वो ही मुराद हैं जो हर चीज को मानते हैं और अल्लाह ताला की तमाम सिफात को भी मानते हैं। ये बात को जरा नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे इसके ऊपर मैं बात करूंगी। ईमान वालों, आप लोगों से कहा जा रहा है जो ईमान का दावा करते हैं हम ईमान वाले हैं, काफरों से नहीं कहा जा रहा, आप लोगों को ये काम करना। इजा तदायन तुम बिदैन, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं आपस में, किस चीज की? दईन की। दईन क्या चीज है? दईन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको सिर्फ हम कर्ज नहीं कह सकते, कर्ज कैन बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। दईन का मतलब क्या होता है? जब एक के जिम्मे दूसरे का हक देना हो जाता है, मसलन है कि मुझे किसी का हक अदा करना है तो ये दईन है मेरे ऊपर। अब इसकी एग्जाम्पल समझे, जैसे मसलन आप अगर गाड़ी खरीदते हैं उसकी कीमत आप आज नहीं अदा कर रहे, आपने कहा है कि मैं एक साल बाद दूंगी, तो ये गाड़ी की कीमत आपके जिम्मे क्या है? दईन है। इसी तरह आपने कोई चीज रेंट पे ली है, चलो गाड़ी कह लेते हैं या मकान रेंट पे लिया है, अब उसका कराया आपके ऊपर क्या है? दईन है, क्योंकि आपने फौरी थोड़ी अदा कर दी है। अब आपने कहा कि मैं महीने के बाद अदा करूंगा तो ये दईन है आपके ऊपर। इसी तरह मेहर है, जो आदमी फौरी तौर पे मेहर नहीं अदा कर रहा, उसने तय कर लिया कि जी मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा,
ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, या मैं साल बाद दूंगा या नहीं साल, तो ये उसके जिम्मे क्या है, दईन है। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से, अब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी उधार ही लें, कर्ज ही लें तो बस वही दईन है, बाकी ये सारी चीजें तो इसमें नहीं। नहीं, दईन आपको समझ आ गई, कर्ज भी उसके अंदर है। आप किसी कहीं कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं आप किसी से, वो भी इसके अंदर है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, इला अजल मुसम्मा, बिदैनी इला अजल मुसम्मा, मुकर्रर वक्त तक, फक्तुबूहू, तो लिख लिया करो इसको, जब आप दईन लो। अब आप अपने जहन में सिर्फ लोन नहीं लेकर आएंगे, आप सारी ये चीजें जो भी आपके जिम्मे किसी का हक देना है, फक्तुबूहू, तो उसको लिख लिया करो जब एक मुकर्रर मुद्दत तक हो। अच्छा, अब जो इसकी एक समरी मैं आपको अभी से बता देती हूँ ताकि आप उसको जरूर नोट कर लीजिए, आपको आगे इसमें काम आएगी और इस आयत को समझने में आपके लिए आसानी होगी। वो ये कि इस आयत में तीन बातें स्पेसिफिकली कही गई हैं कि जब भी दईन का मामला हो, नंबर वन अजल मुसम्मा, मुकर्रर मुद्दत, मुद्दत को मुकर्रर करना जरूरी है, नंबर टू उसको लिख लिया करो, और नंबर थ्री उस पे गवाह मुकर्रर कर लिया करो। इसके गिर्दी ये सारी आयत घूमेगी। ठीक है, अब ये जब इंसान दईन का मामला करता है, अब चाहे वो कर्ज का है या कुछ का है, आम तौर पर कर्ज वगैरह स्पेशली जब लिया दिया जाता है तो कहा जाता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके बाद ही फिर आप देखते हैं कि वो अच्छे भले जो ताल्लुकात होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं और लोग एक दूसरे के साथ बड़े बदजन हो जाते हैं, और मांगने वाला मांगता जाता है, देने वाला आगे भाग रहा होता है, ना कुछ लिखा ना कुछ किया। अब वो कहता है जी मैंने आपको 20,000 दिया था, तो वो कहता है नहीं जी 20,000 तो नहीं आपने दिया था, उस वक्त आपने 15 दिया था मुझे, मिसाल के तौर पे आपने 15 दिया था, अब कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो बहुत सारे मामलात आपस में खराब हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, इसमें ऊंच नीच जो है ना बहुत खराबी लाती है, तो इसलिए हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। वैसे तो आजकल उधार कोई देता नहीं है, अगर उधार देता ही है किसी को तो वो सोचता है कि जब मैं इससे उधार वापस लूंगा तो इसके साथ कुछ नफा आना चाहिए, कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। जिसको वो प्रॉफिट कह रहा होता है ना, वो असल में सूद होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पिछली दफा बताया था कर्ज हसना देना चाहिए, जब भी किसी को कर्ज दें, लोन दें, तो हसना हो, यानी अब आपने उससे उसके बदले में जो लोन आपने दिया हुआ है कोई किसी किस्म का भी बेनिफिट नहीं उठा सकते आप, ना माली सूरत में ना किसी और सूरत में। मैंने आपको बताया था कि असलाफ इस कदर इसमें एहतियात बरतते थे कि वो जिसको कर्ज दिया होता तो उसकी दीवार के साए में भी नहीं बैठते थे कि ये कहीं सूद ना हो जाए, हमने इतना सा भी बेनिफिट नहीं इसे लेना। इल्ला ये कि आपने मतलब बहन भाइयों को दिया हुआ, ऑलरेडी आपके उनके साथ ताल्लुकात हैं या फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ आपका पहला ही लेन देन, गिफ्ट का तबादला या खाना पीना उनके घर या ये सब चीजें पहले से चल रही थी, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर सिर्फ ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन या कुछ और इस तरह का सिर्फ आपने लोन दिया हुआ, तो अब उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते आप। अपनी मेड को भी अगर लोन पे देते हैं और उसने आपको वापस करना है, वो अक्सर हमारे जो पास जो काम कर रहे होते हैं वो उधार ले लेते हैं, बाजी मुझे इतनी की जरूरत है आप मुझे दे दें, अब उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरा एक्स्ट्रा काम करे, वो सूद है, ये मेरा एक्स्ट्रा काम करेगी क्योंकि मैंने इसको कर्ज दिया हुआ ना, वो सूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना ज्यादा, देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला चाहता है कि हम आपस में ना हमदर्दी और एक दूसरे की खैर ख्वाही और एक दूसरे के एहसास के साथ जिंदगी गुजारें, इसीलिए इतनी सारी अहादीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने भाई की किसी जरूरत में मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, जो दुनिया में किसी की मुसीबत दूर करता है अल्लाह ताला क्यामत के दिन की उसकी मुसीबतें दूर करेगा। तो ये चीजें तो ऐसे देनी चाहिए कि ये हमदर्दी के तौर पे, एहसास के तौर पे, खैरख्वाही के तौर पे, लेकिन जहाँ हम उस टाइम में आजकल जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नफसा नफसी का दौर है, कहते किसी का खून नचोड़ लो, किसी से बस खा लो ले लो, मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा, मुझे मेरा क्या बेनिफिट है, हर एक को बस ये होता है कि मुझे क्या मिलेगा इससे। और वो जो बाहम हमदर्दी का या एहसास का कोई जज्बा इल्ला माशाल्लाह किसी के अंदर रह गया होगा, वरना अमूमी तौर पे आप देखते हैं कि नहीं है। और हमें तरगीब क्या दी गई है कि नहीं, ना किसी को जरर पहुंचाओ, ये कायदा है इस्लाम का, ना किसी को जरर पहुंचाओ और ना तुम्हें जरर पहुंचे, ना खुद नुकसान उठाओ ना दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। तो जब हम ये आयात देखते हैं तो ये इसीलिए है कि ना कर्ज देने वाले को जरर पहुंचे और ना ही उसको जिसको कर्ज दिया गया उसको जरर पहुंचे, तो लिख लो। लिखने का मकसद क्या है? अब इसके अंदर देखें, चूंकि ये इतनी लंबी आयत है ना, तो हम इसको एक एक सेंटेंस लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस देख लिया कि जब हमें क्या कहा गया है, आप उसके अंदर इसके पार्ट्स बनाएंगे, जुमला वन लिख लें आप, उसका थोड़ा सा लिख लें या यो लदीना, ताकि आपको पता हो कि ये जुमला वन है, या आप अपने उसमें कुरान में इसको इस तरह ब्रैकेट कर लें कि ये जुमला वन, कि जब तुम कर्ज का लेन देन करो तो ये वो वाला कर्ज है जो एक तो होता है एक हाथ दे दूसरा हाथ ले, नकद, ये वो जो है नकद नहीं है, ये वो सौदा है, आपने खरीदा है, आपने उसका कहा है कि मैं पैसे बाद में दूंगा, तो इसको लिख लेना है। और लिखने में जिसमें वक्त मुकर्रर हो कि इस वक्त में अदा करूंगा। अच्छा, अब इसमें तीन सिनेरियो हो सकते हैं अजल मुसम्मा में। एक तो ये है कि चीज खरीदी और बस खामोशी है, बस हाँ दे देगा, दे दूंगा दे दूंगा, कब दे दूंगा, ना बेचने वाले ने कोई पूछा और ना ही खरीदने वाले ने कहा मैं कब दूंगा, बस चीज ले ली, हाँ दे ही देंगे दे ही देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हो सकता है इसने सोचा हो मैं जी महीने बाद दूंगा जब मेरी तनख्वाह आएगी, लेकिन उसने जो जिसने बेचा है उसने सोचा ये घर से जाके अभी पैसे ला के दे देगा, वो अब मुतालबा करने खड़ा हो गया, और इसने कहा जी अभी थोड़ी मैं दे सकता हूं, इस मामले में झगड़ा हो सकता है, इसलिए ये जायज नहीं है कि बस खामोश रहे और एक एक्सपेक्टेशन सी रखी, नो। दूसरा क्या है तरीका कि आपने किसी से कोई चीज खरीदी है और ये तय हुआ कि कीमत बाद में अदा की जाएगी, लेकिन वो वक्त को स्पेसिफिक नहीं किया, मसलन अच्छा जी मैं पैसे तब दूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, अब होंगे कब पैसे होंगे, एक साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, हफ्ते बाद होंगे, या फिर हमें तो हर वक्त ही लगता है कि हम पैसों में शॉर्टेज है, तो हमें तो हर वक्त ही लगता है कि हमारे पास नहीं है, तो ये तो अनलिमिटेड ही है, खोली ओपन एंडेड जिसको हम कहते हैं ना, ओपन एंडेड छोड़ दिया, अच्छा हाँ जी हम दे देंगे बच्चियों की शादी से फारिग होके तब हम देंगे, अब कब उनके रिश्ते आएंगे कब उनकी शादियां होंगी कुछ पता ही नहीं, हो सकता है साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है कभी हो ही ना, तो इस तरह का ओपन एंडेड आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तीसरा सिनेरियो है जो सही है कि जब मामला हो तब उसको स्पेसिफिक किया जाए, फलां डेट को फलां साल में फलां महीने में फलां वक्त में फलां दिन में मैं दूंगा, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ऐसा इंसान जो कर्ज ले और उसकी नीयत कर्ज अदा करने की भी हो, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है कि वो कर्ज अदा कर सके। और ये बुखारी में एक हदीस आती है जो 7 जगह पे बुखारी में आई भी ये हदीस, और उलमा ने इसे इतने मसले निकाले हैं एक हदीस से, देखें मुसनद अहमद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक आदमी था, उसने दूसरे आदमी से 1,000 दीनार उधार मांगे, उसने कहा गवाह लाओ, वो गवाह कोई था नहीं उस वक्त, उसने कहा अल्लाह की गवाही काफी है, कहा जमानत लाओ, उसने कहा जमानत भी नहीं है मेरे पास कोई, अल्लाह ताला की जमानत काफी है। अच्छा, अदायगी की मियाद मुकर्रर हो गई कि हाँ फलां वक्त में, मान लिया उसने जिसने देने थे पैसे उसने उसको दे दिए, 1,000 दीनार दे दिया। अब इस बंदे ने बहरी सफर किया और अपने काम से फारिग हुआ, जब मियाद मुकर्रर होने को आई तो ये समंदर के करीब आया कि कोई जहाज मिल जाए, कोई कश्ती मिल जाए, मैं उसमें बैठ जाऊं और रकम अदा करके आऊं। लेकिन कोई जहाज ना मिला। जब देखा कि वक्त पे नहीं पहुंच सकता और मैंने एक मियाद मुकर्रर की भी, मैंने तो पैसे देने हैं, तो उसने एक लकड़ी ली, उसको बीच में से काटा और उसमें 1,000 दीनार रख दिए और एक पर्चा भी रख दिया, फिर उसका मुंह बंद कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ की, परवरदिगार तुझे खूब पता है मैंने फलां बंदे से 1,000 दीनार कर्ज लिए थे, उसने मुझसे जमानत मांगी थी, मैंने तुझे जामिन बनाया, और इस पे वो खुश हो गया, उसने गवाह मांगा, मैंने तुझे गवाह बना दिया, और वो इस पे भी राजी हो गया। अब जबकि अपना कर्ज अदा करने आया हूं, कोई कश्ती नहीं है, अब मैं इस रकम को तुझे सौंपता हूं और समंदर में डाल देता हूं, दुआ करता हूं ये रकम उस तक तू पहुंचा दे। कितना उसके अंदर ये एहसास था, फिर इस लकड़ी को समंदर में डाल दिया और खुद चला गया, लेकिन फिर भी कश्ती की तलाश में रहा कि मिल जाएगी तो मैं जाऊंगा। यहां तक कि ये हुआ कि वहां जिसने इसको कर्ज दिया था, जब उसने देखा वक्त पूरा हो गया और आज इसको आ जाना चाहिए, तो वो भी दरिया के किनारे आके खड़ा हो गया कि वो आएगा तो मेरी रकम मुझे दे देगा या किसी के हाथ भिजवाई होगी। मगर जब शाम होने को आ गई, कोई कश्ती इस तरफ आई नहीं, तो ये वापस लौटा, किनारे पे एक लकड़ी देखी, तो ये समझ के खाली हाथ तो जा ही रहा हूं, लकड़ी को ले जाता हूं, फाड़ के सुखा लूंगा और जलाने के काम आएगी। घर पहुंच के जब उसको चीरता है तो खनाखन बचती हुई अशरफियां निकलती हैं, गिनता है तो पूरी 1,000 है, और वहीं पे पर्चा भी नजर आता है, उसको भी उठा के पढ़ लेता है। उधर वो आदमी जो मकरूज था ना, एक दिन वो 1,000 दीनार लेकर आ जाता है और कहता है कि ये ले आप, आपकी रकम, आप मुझे माफ कर दें, मैंने बड़ी कोशिश की कि वादा खिलाफी ना हो, लेकिन कश्ती नहीं मिली तो मैं मजबूर हो गया और देर लग गई, आज कश्ती मिली है, आपकी रकम लेके वो हाजिर होंगे। उसने पूछा क्या मेरी रकम आपने भिजवाई भी है, उसने कहा मैं कह चुका हूं मुझे कश्ती नहीं मिली, उसने कहा अपनी रकम वापस लेके खुश होके चले जाओ, आपने जो रकम लकड़ी में डाल के अल्लाह ताला पर तवक्कल करके भेजी थी, उसको अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचा दिया और मैंने रकम वसूल कर ली है। सुभान अल्लाह, जब इंसान ये सोचता है कि मैंने देनी है रकम, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है, अल्लाह ताला भी उसको इसके लिए जरिए बना देता है। तो यहां से हमें पता चला कि एक तो हम जब भी किसी साथ बात करें तो एक टाइम को फिक्स करें कि उस वक्त आपकी रकम आपको मिल जाएगी, और लिख लिया करें, वल यक तो बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान कातिब कैसे, अदल के साथ, अदल के साथ। ये हमने अब दूसरा जुमला देखा कि दूसरा जुमला क्या है, कि कातिब जो भी लिखे, आप किसी को कातिब बनाएंगे, उस जमाने में तो लोगों के पास नहीं होते थे, लिखने पढ़ने की सलाहियत नहीं होती थी, ये स्किल नहीं थी उनके पास, बहुत लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं होते थे। आज भी ऐसा है कि बेशक हम लिखने पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन ट्रांजेक्शन्स को लिखना जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें कवर्ड हो, इसीलिए कोई वकील लिखता है या वसीका नवीस होते हैं, जब अदालतों कचहरियों में आप जाते हैं तो वहां पे भी लिखने वाले होते हैं, वो लिखते हैं, वो ये उनका ये काम होता है वो सही लैंग्वेज में, कि हर चीज कवर्ड हो, ऐसे नहीं कि किसी बच्चे को कह दिया तू लिख दे, अब उसको क्या पता क्या लिखना है। और अदल के साथ लिखे, इंसाफ के साथ लिखे, यानी ये नहीं है कि जब लिख रहे हो तो कहीं कोई डंडी मार दे, लिखना 50,000 था तो 5 लाख लिख दिया, एक जीरो और लगा दिया, या फिर लिखना तब तक है, तब वापस करेगा और कुछ और ही डेट लिख दी। अच्छा, इसके अंदर ये भी याद रखिए कि एक है बेई सलम या बेई सलफ, दोनों नाम इसके आते हैं, सीन के साथ सीन लाम मीम और सीन लाम फा, ये भी जायज है और ये भी इसके अंदर ही शामिल है। और वो कौन सी बेय होती है जिसमें आप कीमत एडवांस दे देते हैं और चीज बाद में आपको मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए थे तो यहाँ के लोग ये करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रोका नहीं, फरमाया कि मियाद मुकर्रर कर लो और इसके अंदर ये तोल या वजन मुकर्रर कर लिया करो, भाव ताव चुका लिया करो। तो ये सारा अगर आपने कर लिया तो ये भी जायज है बैय सलम कि आपने एडवांस दिया। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आपने कहा मैं आज एडवांस देती हूँ, लेकिन इतने कपड़ा मसलन जब वो किसी का आ रहा है, शिपमेंट आ रही है, तो इतना कपड़ा इतने पैसों का मुझे इस डेट को मिलेगा, ठीक है, तो तब सही है, ये भी जायज है। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, और ना इनकार करे कातिब लिखने वाला कि वो लिखे जैसा कि सिखाया उसको अल्लाह ताला ने, बस चाहिए कि वो लिखे। तो कातिब को भी कहा गया, हुक्म दिया गया कि वो लिख दिया करे। अब ये अगला जुमला है, नंबर 3 आप कह सकते हैं कि कातिब को लिए ये कहा गया कि वो लिख दिया करे, वो इससे इनकार ना करे क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको लिखने की सलाहियत दी है। तो अब ये क्या ये लिखना फर्ज है? क्या ये लिखा अगर ना जाएगा तो क्या गुनाह होगा? इसके ऊपर जमहूर का ये कहना है कि ये वाजिब नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको दलील दूंगी हदीस से भी और अगली आयत में भी है, लेकिन ये बेहतर है, मुस्तहब है, ठीक है। तो इनकार ना करे, अब ये इनको कहा जा रहा है किसको? कातिब को। पहले किसको कहा गया था? वो जिन जिनके दरमियान ट्रांजेक्शन हो रही थी कि इसको लिखना चाहिए, इसको एक इंसाफ के साथ रकम के मामले में इंसाफ लिखने में हो, हर चीज क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में कोई मसाइल ना हो। और अब किसको कहा जा रहा है? कातिब को, कि कातिब लिखे। कि अब उसको कहा जा रहा है कि लिख दो तो वो लिख दे, चाहे पैसे लेके लिखे, उनकी जॉब भी होती है, तो चाहे पैसे लिखे लिखे जैसा कि अल्लाह ताला ने सिखाया उनको। इसका मतलब है कि ये जो लिखने का इल्म है ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत होता है, ये भी अल्लाह ताला ने सिखाया लिखना हमें। अगर हम लिख सकते हैं और इसमें किसी के काम आ सकते हैं तो ये सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने ये स्किल दी है। मिसाल के तौर पे कई लोगों को लिखना नहीं आता, वो आपको कहते हैं मुझे एक खत लिख दो, मुझे ये लिख दो, क्योंकि पहले तो बहुत ऐसे जब खतों किताबत होता था तो कई दफ़ा मिसाल के तौर पे हमारी मेड्स होती हैं, उनको नहीं लिखना पढ़ना आता तो कह देती हैं कि आप ये लिख चीज़ लिख दें, मुझे ये खत लिख दें, ऐसे लिख दें। तो उसमें इंसान को ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने मुझे एक नेमत दी है, एक सलाहियत दी है, और ये इसके बाद मुझे चाहिए कि इसका शुक्र ये है कि वो लोग जो लिखना नहीं जानते मैं उनके किसी काम आ जाऊं, ठीक है। तो ये भी सदका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी सदका है, किसी काम करने वाले का हाथ बटा दो, किसी गिरे पड़े का काम कर दो, ठीक है। और अता फरमाते मुजाहिद ने भी लिखा कि कातिब पे लिख देना इस आयत की रूह से वाजिब है। अच्छा, अब कौन लिखवाएगा, डिक्टेट कौन करवाएगा, ठीक है। अब ये अगला जुमला, वल युमलिल, और चाहिए कि इमला कराए, डिक्टेट कराए, कौन? अल्लदी अलैहिल हक, जिसके जिम्मे हक है, यानी जो मकरूज है, जो कर्जा ले रहा है ना, वो डिक्टेशन कराए कि मैंने इतना कर्जा लिया है और मैं इस तारीख को वापस करूंगा, ठीक है, वो सही सही बात डिक्टेट कराए। और इसके अंदर वलयत्तकिल्लाह रब्बहु, और इसको चाहिए कि अल्लाह से डर के रहे, यानी कोई गलत बात ना लिखवाए, गलत चीज ना, खौफे खुदा रखे। तो किस कौन पहले भी किसको कहा गया कातिब को कि वो इंसाफ के साथ लिखे, अब ये चूंकि डिक्टेशन करा रहा है इसलिए तुम भी तकवा इख्तियार करना। आप देखते हैं बार बार तकवा की कितनी बात होती है, चाहे वो निकाह के मामलात हैं, चाहे वो माली मामलात हैं। सुभान अल्लाह, वो सोसाइटी कितनी प्यारी हो जिसके अंदर सब लोग तकवा इख्तियार किए, उनके हर एक को ये डर हो कि अल्लाह ताला के आगे मेरी जवाबदेही होनी है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरा रब मुझे देख रहा है, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। आप वो चाहे घरेलू मामलात हैं, तलाक के मामलात हैं, रजात के मामलात हैं, आपको पता है हैज के मामलात हमने पढ़े थे, उसके अंदर भी कि किसकी इद्दत कब खत्म हो रही है, उसके अंदर तकवा इख्तियार करना, शोहर को कहा जा रहा है तुम तकवा इख्तियार करो, अब यहाँ पे माली मामलात हैं, तुम डिक्टेशन भी करा रहे ना, अल्लाह का खौफ रखना। लेकिन जिस सोसाइटी में खुदा खौफ ही खत्म हो जाए, बताएं फिर वहां पे क्या हालात होंगे, जिनको यही डर ना रहे कि एक रब मुझे देख रहा है, फिर वो किस कदर हद तक गिर सकती है, क्योंकि खुदा का खौफ ही है जो इंसान को सीधा रखता है कि उस रब की नजर मेरे ऊपर है, और आज अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो कल मैं उसके आगे जवाब कैसे दूंगा, मुझे खड़े होना उसके आगे। ये है चीज जो एक ईमान वाले के अंदर रिक्वायर्ड है, ईमान वाला ये चीज उसके अंदर ही हो सकती है जिसका अल्लाह पर ईमान है, आखरत पर ईमान है। ये कौन सी सोसाइटी है जिसके अंदर से ये ईमान खत्म हो जाए, जिनके अंदर खुदा खौफ ही ना रहे, कर्ज लेकर और क्या ना, कौन से कर्ज है, और उसके बाद इनकार ही कर देना, लिखवा भी रहे हैं तो उसके अंदर डंडी मारना, किसी के ऊपर ज्यादती कर देना, हक मार लेना लोगों के। सोचें कि वहां पे खुदा का खौफ किधर गया। तकवा वालों के लिए इसीलिए जन्नत है कि तकवा वाले देखें, इवन ये जो माली ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर भी तकवा आ रहा है, और घरेलू मामला आता है उसके अंदर भी तकवा आ रहा है। जिसमें तकवा होगा वाकई वही जन्नत में जा सकता है फिर, क्योंकि जिसमें खुदा खौफ ही नहीं ना, वो फिर जो मर्जी करे, वो किसी लिमिट पे रुकता नहीं है फिर, वो तो बाय हुक और बाय क्रुक उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे वो कोई गंदगी गंदे काम करके करे, हराम रास्ते से करे, सूद खाए या कुछ भी करे, उसको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, उसको अब खुद अमीर होना है। वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, अब देखिए है मामला दो इंसानों के दरमियान हो रहा, लेकिन याद रखो तीसरा अल्लाह है, वला यबखस मिनहु शैआ, और ना कमी करना, बख्स क्या होता है कमी करना, आगे भी आएगा लफ्ज, इसलिए इसको याद रखिएगा, ना कमी करे इसमें किसी चीज की, थोड़ी सी भी हेरा फेरी ना करना, लिखते हुए कुछ और चीज जो था जो तय हुआ है उसे आगे पीछे ना करना। शई आ नकेरा है, मैं छोटी से छोटी भी आ जाती है, कोई भी चीज माइन्यूट चीज की भी हेरा फेरी ना हो। इसीलिए आप देखते हैं वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन है, तीसवें पारे में आपने याद की होगी ये सूरा, उसकी पहली आयत थी वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, मुतफ़िफ़ीन के लिए वैल है, तबाही है, हलाकत है, जहन्नुम की ये वादी है जिसका नाम वैल है। मुतफ़िफ़ीन कौन होते हैं जो छोटी सी चीज में डंडी मारते हैं, छोटा सा किसी का हक देना था वो नहीं दिया, वहां पे चोरी कर ली, वहां पे हक मार लिया, वहां पे ज्यादती कर ली, अब वो चाहे कर्ज की ट्रांजेक्शन है, चाहे वो किसी को कुछ रकम देनी थी, किसी का रेंट पे करना था, किसी का कुछ करना था, इतनी सी चीज में भी। और मैं किसी के असलाफ में से पढ़ रही थी, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह, वो कितनी एहतियात करते थे। और मैं रोना आ जाता है कि अल्लाह हम कहाँ खड़े हैं, और पता नहीं किस किस का हमने क्या देना हो कयामत के दिन। वो खड़े हो जाएंगे लोग उस दिन, और हमारी जो थोड़ी बहुत हमने कुछ किया भी होगा वो भी ले जाएंगे। कि वो किराए के मकान में थे, और कच्चे मकान होते थे आपको पता है पहले, तो उन्होंने थोड़ी सी मट्टी खुरच दी उसकी दीवार से, कुछ ही जरूरत थी तो उससे खुरची, और उनको इतना वो एहसास हो गया, अल्लाह अकबर, ये मैंने इससे कमी कर दी है, इसका मुझे ना जवाब देना पड़ जाए कयामत के दिन, अल्लाह अकबर। हम किराए के मकान में रहे तो उसको तोड़ फोड़ कर देंगे, उसको एंड का तो किराया ही नहीं देना, उसको किस तरह उसको मिस यूज करेंगे, तबाही मचा के उसकी चले जाएंगे, रहते जाएंगे, किराया ही नहीं देंगे, वो किराया लेने के लिए आ रहा है, हमने देना ही नहीं है, क्या कर लेगा जी, हमें को निकाल सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पे हम कर सकते हैं ना वहां पे हम डट जाते हैं, क्या कर लेगा ये, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता, मजबूर है ही। हमें अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता, हमें ये नहीं होता मैं किसी का हक मारना हूं, हमें होता है ये क्या कर लेगा, वो तो शायद कुछ भी ना कर सके, वाकई ना शायद कुछ कर सके, लेकिन एक अल्लाह ताला तो है, उसके आगे कैसे जवाब दोगे। इसलिए तकवा तकवा तकवा, एंड में भी आयत के जाके तकवा, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक, देखिए अब कितनी डिटेल है अगला जुमला, आप नंबर्स लगाते जाएं जुमले को। फिर अगर हो अल्लज़ी अलैहिल हक, जिसके जिम्मे हक है देना, यानी जो मकरूज है वो डिक्टेशन करा रहा था ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसका वो सफीहन हो, वो कम अकल है, उसको इतनी, जैसे होते हैं कई बिल्कुल ही बेचारे भोले से लोग होते हैं, उनको कोई भी बेवकूफ बना लेता है, वो बिल्कुल ही सीधे जिसको कहते हैं ना, इतने मेंटली भी शार्प नहीं होते वो, उनको कोई पागल बनाना चाहे ना तो इसी तरह बना लेता है वो। अब बेचारा उसने कर्ज तो ले लिया, लेकिन उसकी इतनी सेंस नहीं है, इतना इसको अकल नहीं है, और दईफन, या वो कमजोर है, मतलब कमजोर सफीह जो था वो मेंटली वीक था, दाइफ जो है वो फिजिकली वीक है, तो अगर वो इस तरह से वीक है, फिजिकली वीक से मतलब ये कि इतना बूढ़ा हो गया बेचारे को इतनी समझ नहीं है, वो भूल भी जाता है वो, अब वो इमला कराने बैठा हुआ, वो कर्ज उसने लिया, या बच्चा है अभी इतना बालिग नहीं है, अउला, या थर्ड सिनेरियो, पहला क्या सिनेरियो था, मेंटली इतना केपेबल नहीं है, सेकेंड फिजिकली नहीं है, थर्ड ला यस्ततियो अन युमिल्ला, कि वो नहीं इस्तता तक था कि वो इमला कराए, फॉर एग्जाम्पल वो गूंगा है, फॉर एग्जाम्पल वो उसकी लुकनत है जुबान में, वो क्लियर नहीं बोल पाता, तो अब वो डिक्टेट कराएगा, ये ना हो कि 5 को 50 बोल दे, या फलान डेट को कुछ और बोल दे, तो या कातिब लिखने वाले ने कुछ और उसकी समझ ली बात, तो वो इस्तात नहीं रखता ना, या बोलने की इस्तेआत नहीं रखता, बोल ही नहीं पाता, या सही सुन नहीं पाता, या वो फॉरनर है, उसकी वो लैंग्वेज ही नहीं है, तो अब उसको नहीं पता कि किस तरह वो इमला कराए, तो इस्तेआत नहीं रख, किसी तरह की भी से भी इनकेपेबल है। हालांकि देखें उस वक्त अभी लिखने लिखाने का इतना दौर नहीं था, इतने लोग पढ़े लिखे इस तरह से नहीं होते थे, फिर भी कितना जोर दिया गया। फल युमलिल वलीयुहु बिल अदल, तो क्या चाहिए कि इमला कराए उसका सरपरस, उसका गार्डियन, किसका, मकरूज का, बिल अदल, वो भी साथ इंसाफ के, अब कातिब भी लिखे कैसे, साथ इंसाफ के, इमला कराने वाला भी अल्लाह से डरे, और अगर उसका वली कर रहा है तो वो भी साथ इंसाफ के कराए, वो कोई ये ना हो कि वली ने कह दिया कि हाँ ये तो यतीम बच्चा है, मैं इसका गार्डियन हूँ, चलो इसको थोड़ी सी मैं रायत दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ गया, जो देने वाला है वो तो इतना अमीर है, उसको क्या फर्क पड़ता है। अक्सर हम कर्ज इसलिए नहीं वापस अदा करते कि हम कहते हैं जी वो मिलियनेयर है, उनको थोड़ी फर्क पड़ता है, हमने उनके 10-20 हजार मारे भी हुए हैं, तो उनके लिए तो ये एक रुमाल की भी कीमत नहीं है। तो इसलिए हम इसको बहुत लेजरली, बहुत कैजुअल ले लेते हैं। उससे नहीं फर्क पड़ता कि वो कितना अमीर है, अगर मुझे उसका हक देना है और हक का कयामत के दिन इतना बड़ा हिसाब है कि इतनी छोटी सी चीज भी किसी ने किसी की मारी होगी कि एक पीलू की टहनी के बराबर, जैसे मिसवाक है, इसके बराबर भी किसी ने किसी की चीज देनी होगी, तो वो उस वहां पे उस दिन निकाली जाएगी उसकी नेकियों में से। तो उसका वली भी किस तरह से कराए, आप देखो चूंकि वो तो इस तरह का है, तो अब ये नहीं कि कोई उससे फायदा उठा ले, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी बारीक चीजों को मेंशन किया है कि वो तो अगर बेचारा नहीं, ये 3 रुकावटें ही हो सकती हैं ना किसी के लिखवाने में, कि अब उसको कहा गया कि ये लिखवाए, ये इमला कराए, डिक्टेट कराए, लेकिन उसको या इधर वो बेचारा कम अकल है, तो ये ना हो कि कोई उससे फायदा उठाए, या बेचारा बूढ़ा है, बूढ़े बेचारे को वैसे ही नहीं समझ आती, तो उस ये ना उससे फायदा उठा ले, या फिर वो उसकी खुद ही इस्तात नहीं है, वो अंग्रेजी बोलता उसको उर्दू आती ही नहीं है, अब जो मर्जी कोई लिख करा ले, ऐसे नहीं, जो उसका वली, जो उसका गार्डियन, जो उसका सरपरस्त है, वो फिर सही से लिखवाए। वस्तशहीदु, और गवाह तलब कर लिया करो। अगला जुमला, ये नेक्स्ट जुमला करके नंबर 5 है या नंबर 6 है, जिस तरह नंबर 5 बन गया। वस्तशहीदु, और गवाह बना लिया करो, क्योंकि कर्ज का मामला है। इसको शहीदैन ही मेरे रिजाले को, शहीदैन दो गवाह मेरे रिजाले कोम कौम तुम्हारे मर्दों में से, यानी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आज के मसलन ये जो लिखाया जा रहा है ना, इसके ऊपर कोई आज भी होते हैं कि जो है ना विटनेसेस, विटनेसेस के सिग्नेचर होते हैं, तो विटनेसेस जो हैं दो रख लिया करो, जो रिजाली कौम तुम्हारे मर्दों में से, यानी वो भी मुसलमान होने चाहिए, क्योंकि दो मुसलमानों के अंदर ये ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर एक गैर मुस्लिम है और एक मुसलमान है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर दो मुसलमानों में हो रही है तो फिर मुसलमान ही कोई विटनेसेस भी होने चाहिए, दो हों। और ये दो कैसे होने चाहिए, बाले हों, आकिल हों, ये ना कि बेवकूफ से हो, उनको खुद ही ना पता हो, और अकल वाले हों, उनकी अकल सलामत हो, बालिग भी हो, बच्चे को नहीं रख सकते, क्योंकि रिजाल जो है ना मर्द बड़े को कहते हैं, बच्चे को रिजाल में से रजुल नहीं कहते, ठीक है, और मुसलमान भी हो, क्योंकि कुम है। तो ये क्यों रखा जाएगा, ताकि कोई भी किसी किस्म की भी गुंजाइश किसी गलती की ना हो। और सूरह नूर जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गवाही कबूल नहीं होती, तो गवाह जो बनने वाला होता है ना, वो भी आदिल होना चाहिए, आदिल वाला ऐसा होना चाहिए, उलमा कहते हैं कि जो कबीरा गुनाहों के अंदर मुलविस ना हो, यानी अगर वो मसलन है कि सूद खाने वाला है, यतीम का माल खाता है, शराब पीता है, जिना करता है, या जादू करता कराता है, ये कबीरा गुनाह है ना, इनको गवाह नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े गुनाहों करने में अल्लाह ताला का डर नहीं रखता, वो झूठ बोलने में कल को क्या उसको डर होगा, इसलिए वो नहीं गवाह बनेंगे, ठीक है। इसमें दो मर्द बालिग, और दूसरी आगे आ रहा है कि जिसके ऊपर राजी भी हूं, वो आगे आ रहा है, उससे पहले क्या है, फइल्लम यकूना रजुलैनी फरजुलु अमरातानी, अगर ना हो दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतें कर ली जाए, मिम्मन तरदौना मिन शुहदाई, जिसको तुम पसंद करते हो गवाहों में से, यानी जिस पे दोनों पार्टीज राजी हो के ये विटनेस हो, मतलब एक पार्टी अगर कहती है नहीं जी मैं तो इसको अमानतदारी नहीं समझता, मैं तो इसके ऊपर इतमाद ही नहीं करता, मुझे लगता है इसके तो पहले ही मेरे साथ दुश्मनी है, तो ये ना हो कि ये कल को मेरे साथ कोई ज्यादती करे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर राजी नहीं हूं, तो ये नहीं फिर गवाह बनना चाहिए, जिस पे दोनों जिसको मुनासिब समझते हों, जिन जिन दो के ऊपर ऐसे दो गवाह जिनके ऊपर दोनों पार्टीज का एतमाद हो, ठीक है, दोनों पार्टीज एग्री करती हूं, तरदौना मिन शुहदाई का मतलब ये है,
एग्री करती हूं दोनों पार्टीज, ठीक है। अच्छा अब एक बात यहां पे क्या आई कि अगर दो आदमी नहीं मिल रहे तो एक आदमी और दो औरतें हो जाए, क्यों? अंतदिल्ला एहदाहुमा फतुदक्किरा एहदाहुमल उखरा, कि अगर भूल जाएगी उनमें से एक तो दूसरी उसको याद दहानी करा दे, रिमाइंड करा दे कि वो भूल, यानी कहीं उसको कहीं भूल लग जाए तो दूसरी उसको याद कराने के लिए। यहां से मैं थोड़ा सा इस मामले को और आपके साथ डिटेल में करना चाहूंगी। ये मामला वो है, एक मर्द और दो औरतें। दो औरतें यहां पे क्या आईं कि पहले कहा गया था दो मर्द, अब एक मर्द और दो औरतें, यानी दो औरतें किसके बराबर उनकी गवाही हुई? एक मर्द के। ये वो इश्यू है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लय दय की जाती है और बहुत ज्यादा इसको इशू बनाया जाता है कि देखो जी इस्लाम में तो एक मर्द को दो औरतों के बराबर करार दिया गया है, और देखें औरत का दर्जा कितना कम, एक औरत की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं है, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, तो इसलिए औरत को तो बेवकूफ समझा जाता है, औरत को तो हकूक नहीं दिए गए, औरत को तो बराबरी नहीं दी गई, औरत को देखें पीछे किया गया है, हकीर जाना गया है। याद रखें ये बातें बदजनी पैदा करती हैं दीन के मामले में, इनको इतना बड़ा इशू बनाया जाता है कि ये लोगों को दीन से, खास तौर पे औरतों को दीन से दूर कर देती हैं और इस्लाम के बारे में उनके दिल में मैल आ जाता है। लो जी हम कोई किसी से कम है, लेकिन याद रखिए ये बातें वो ही कर सकता है जिसके दिल में रब की अजमत नहीं है, जो अल्लाह ताला को पहचानता ही नहीं है और जिसमें कोई खौफ खुदा नहीं। या आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत लिबरल, बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं और दीन की कोई समझ नहीं है उनको, अल्लाह ताला की पहचान नहीं है उनको, वो जानते नहीं है कि रब्बुल आलमीन है कौन। जो ये बातें करता है, और हमारे अच्छे सादा लो लोग अच्छे भले भी उनके पीछे लग जाते, आज इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि ऐसा इंसान जो ये बात करता है कि जी इंसाफ नहीं है, ये जी औरत को देखो हकूक नहीं दिए गए, ये कि जी इस्लाम के अंदर क्या है, ये आधी गवाहियां हैं, या इस चीज का मजाक उड़ाता है, उसने अल्लाह ताला के अलीम हकीम खबीर रहमान रहीम अल अदल अल मजीद इन सारी सिफात में या तो शक किया या उनका बिल्कुल ही इनकार कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कि ईमान वाला वो होता है जो अल्लाह ताला की तमाम सिफात को एज इज मानने वाला है, जिसने ये समझ लिया कि जिस रब ने ये फरमाया कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर यहां पर है, यहां ऐसे मामलात में है, उसने इंसाफ नहीं किया, तो उसने उस अल्लाह ताला को कि इस नाम की कि वो अल अदल है, अदल करने वाला है, इसका तो इनकार ही कर दिया। उसने इसका भी इनकार कर दिया कि वो अल अलीम है, क्योंकि उसको हर चीज का इल्म है, हमारा ये ईमान है, हाल मुस्तकबिल माजी सब चीजों को जानने वाला, उसके इल्म के का अहाता कोई नहीं कर सकता। आयतल कुर्सी में पढ़ लें आप, जैसा उसका इल्म है वैसा किसी का इल्म नहीं हो सकता, लेकिन उसने उसका भी इनकार कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला माफ करे, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, वो कहता है कि मुझे ज्यादा पता है, उसने अल्लाह ताला के अल हकीम होने का भी इनकार कर दिया क्योंकि सारी हिकमतों को जानने वाला तो अल्लाह ताला है, उसने उसके रहमान होने का भी इनकार कर दिया क्योंकि नाउजुबिल्ला उसने अपनी एक बड़ी कमजोर मखलूक के ऊपर रहम नहीं किया, यानी कई सिफात का इनकारी बन गया, कई में शक करने वाला बन गया, तो उसके दिल में क्या अजमत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला किसके साथ ना इंसाफी करेगा। क्या उसने उसके साथ जुल्म कर दिया? क्या वो हक नहीं देने वाला हकदार को उसका? उसने इतराज किया अल्लाह ताला पर? ये एक छोटी बात नहीं है? ये बस कह दिया कि देखो जी ऐसे औरतों के साथ तो इस्लाम के अंदर कुछ नहीं रखा, ये हकूक दिए गए और जुल्म हो गया और ऐसे किसको कह रहे हैं? ये क्या उलमा ने बनाया हुआ दीन? क्या ये उन्होंने ये रूल्स लेकर आए हैं या ये कुरान में है? नंबर टू, उसने कुरान का भी इनकार कर दिया इसलिए कि ये बातें कुरान में है। अल्लाह ताला का ये कलाम है, इसमें एक आयत को भी ना मानना पूरे कुरान का इनकार है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में भी शक कर लिया क्योंकि ये कुरान कौन लेकर आया है, किसने हमको सुनाया है? उनकी लाई हुई हर बात को हम कहते हैं आमन्ना, हम ये नहीं कहते इसका सबूत लेकर आओ, हम कहते हैं हम ईमान लाए इस पे। तो उसने इसका भी इनकार कर दिया। तो ये बात एक जगह नहीं रुकती, फिर ये चलती ही जाती है। जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, जो ईमान वाला खुद को कहता है, जो मुसलमान खुद को कहता है, जो कलमा पढ़ता है, वो अल्लाह ताला को इलाह मानता है। और इलाह मानने का मतलब है उसकी हर बात को बगैर चू चरा के मान लेना। कुरान को मानना, हदीस को मानना, जब हमारा ये दावा है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तो जब कुरान में ये बात आ गई कि और हम ये मानते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से, हर हर आयत हर हर लफ्ज अल्लाह ताला की तरफ से, यहां पर आकर हम कहते नहीं ये नहीं मैं मानती, अस्तग़फिरुल्लाह। जब रसूल की रिसालत को मान लिया, तो उनकी कही भी एक एक बात को मान लिया और फिर आंखें बंद करके मान लिया कि उनकी बात सही है, मेरी अकल में मसला है। तो ये उलमा का मामला हरगिज नहीं। मैंने खुद सुना है, किसी कोई एक टीचर थी तो उन्होंने कहा, स्कूल में पढ़ाने वाली थी, उन्होंने कहा कि देखें ये अगर इस्लामी कवानीन आ गए, अगर शरीयत आ जाती है, तो औरत की तो दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर हो जाएगी, तो ये तो हमारे साथ अस्तग़फिरुल्लाह ना इंसाफी है और ये तो हम नहीं होने देंगे। और ये क्या बात हुई? तो बाज दफा ऐसा होता है, हम वेस्टर्न कल्चर से या वेस्ट से या और कई लोगों के कहने से हम ऐसे मुतासिर हो जाते हैं कि बजाय इसके कि हम कुरान पढ़ें और कुरान पढ़ के जो चीज कुरान के मुताबिक है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में असूल बनाएं, हम उल्टा क्या करते हैं? हम दुनिया की ऐनक से कुरान को देखते हैं, जो दुनिया कह रही है उसके मुताबिक अगर कुरान में है तो ठीक है, अगर उसके मुताबिक नहीं है तो जनाब कुरान में ही हम अल्लाह ताला माफ करे कि हम एतराज करने लगे। तो ये कौन सा ईमान है? मेरी अकल में पड़ेगी पहले मुझे कोई बताए ये क्या बात हुई, ये क्या, जब मुझे कोई कन्विंस कर लेगा तब मैं मानूंगी, मुझे कोई ला के दो कोई प्रूफ के, जिसमें क्या बेहतरी हो सकती है, ये तो हमारे साथ इंसाफ ने। अगर आपके मानने से ही आपने कन्विंस होना है तो फिर ये ईमान नहीं है। ईमान गैब पर ईमान है। देखें शुरू ही हुआ कुरान, युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी है ही वो जो गैब पर ईमान रखता है। मुझे नहीं समझ आती, ना समझ आए, वो गैब में होंगी अल्लाह ताला की हिकमतें, जो भी, वो मेरे सामने नहीं भी हैं, डजेंट मैटर, मैं क्या चीज हूं? जब खुद को झुकाओगे तो तभी ईमान आता है ना। अब खुद को इतना बड़ा किया हुआ और अपनी अकल को इतना बड़ा किया हुआ, और हमारे पास तो ये बात है और हमारे साथ तो ये ज्यादती हो गई, जब आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं तो आप क्या झुकेंगे? तो बात तो ये है कि हम जो भी कोई कह रहा हो या दुनिया के जितने भी असूल किसी ने बनाए हुए, हम उनको छोड़ने पर तैयार हो जाएं लेकिन कुरान को ना छोड़ें, कुरान में शक ना करें। ये इनकार करना इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। फिर आप ये बताइए, क्या हमें इस चीज पे इतराज है कि अल्लाह ताला से ने अपनी मखलूक का ख्याल नहीं किया? खुद बताएं, जो रहमान है, अगर कोई अर्रहमान का माना समझता है ना, तो बताएं उससे बढ़ के कोई अपनी मखलूक का ख्याल करने वाला होगा? जिसने ये फरमाया, वह आशीरुहुन्ना बिल मारूफ, मर्दो तुम औरतों के साथ अच्छे तरीके के साथ जिंदगी गुजारो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, और अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको गाइडेंस दी ना, कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं औरतों के साथ खैर का मामला करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस्वा बन के दिखाया, एग्जाम्पल बन के दिखाया, फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतरीन हूं। और आपके घर वालों में कौन था? आपकी बीवियां थी। इस्लाम ने तो औरत को उस वक्त हक दिए जब उसके पास जीने का हक भी नहीं था, जिंदगी का हक भी नहीं था। उस जमाने में हक दिए जब औरत को भेड़ बकरी समझा जाता था, तब इस्लाम ने हक दिए। जब एक मर्द 20-25 औरतों से शादी कर लेता था और वो फर्क नहीं पड़ता था, किसी की 12 बीवियां, किसी की 10 बीवियां, किसी की इतनी है। जब बेटा अपने बाप की वफात के बाद अपनी सौतेली मां से खुद शादी कर लेता था ताकि जायदाद बाहर ना जाए, इस्लाम ने तो सबसे ज्यादा औरत के हकूक के लिए आवाज उठाई जब औरत की माशरे में कोई हैसियत नहीं होती थी, जब इसको इंसान ही नहीं समझा जाता था, कोई विरासत में हक नहीं था, कोई किसी चीज में हक नहीं था। उस वक्त के लोग तफरीत का शिकार थे, आज इफरात का शिकार है। तफरीत क्या होती है? मतलब कमी करना। वो कमी करते थे, आज उस एडिशन कर दिया और ज्यादा कर दिया कि जी औरत को तो मर्द के एग्जैक्ट बराबर उतना ही होना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए हिस्सा। औरत को अगर विरासत में मर्द से आधा दिया गया, मर्द को 2 हिस्से, औरत को 1 हिस्सा, तो इसलिए क्योंकि उसके जिम्मे घर का खर्चा ही नहीं है, ना उसके जिम्मे किसी को खाना पिलाना है, ना किसी को पहनाना है, ना कोई रहाइश का, कोई उसके जिम्मे है ही नहीं, उसकी ड्यूटी ही नहीं है लगाई, सारी जिम्मेदारी आदमी पे। अब आप लोगों ने अपने माशरे में खुद गलत कर दी ये चीजें, खुद उलट कर दी, तो इसके अंदर इस्लाम को क्यों दोष देते हो? आपने खुद औरत के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, ये भी इतने बिल पे करेगी, आदमी कहता है कि तू भी इतने बिल पे कर, हस्बैंड कहता है इतना तुम करोगी इतना मैं करूंगा, तुम भी कमा के लेकर आओ, तुम भी पिच इन करो। इस्लाम ने तो नहीं कहा था, आपने सारी मशीनरी उल्टी करके अब सारा मलबा इस्लाम पे डाल दिया। इस्लाम ने तो कहा तुम आराम से बैठो, ऐश करो घर के अंदर, बच्चों को देखो, घर को देखो, शोहर को देखो, तुम्हारे पर तो कमाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारे ऊपर लाके खर्च करेगा। अगर शोहर नहीं है तो बाप की जिम्मेदारी, बाप भी नहीं है भाई की जिम्मेदारी, बेटे की जिम्मेदारी, नहीं तो जो भी वली है उनकी जिम्मेदारी, तुम्हारे तो पर तो कभी भी जिम्मेदारी नहीं डाली। हाँ, अपने शौक से अगर तुम कुछ करती हो तो वो तुम्हारा है, इसने खर्च करना किधर है? ना बच्चों को पालने पे खर्च करना है, ना उनकी फीसों पे खर्च करना है, ना घर के किराए पे खर्च करना है, ना कोई बिल अदा करना है, जो भी है वो सिर्फ तुम्हारी पॉकेट मनी है, उसने तो सारे सब पे खर्च करेगा वो। मैं नहीं कभी आदमियों को देखती कि कोई आदमी कह रहा हो औरतों को इतनी सहूलियात दे दी, ना तो ये अपने मखसूस दिनों में नमाज पढ़ती हैं, उनके ऊपर रोजे भी माफ हो जाते हैं, माफ तो नहीं कि बाद में रख लें, उनके ऊपर रोजों की भी कजा होती है, नमाज की तो कजा भी नहीं है, और ये घर में आराम से बैठती हैं, ऐश करती हैं, ना इनको मस्जिद जाने का है, ना इनको कोई कमाने का कोई है, हमें क्यों नहीं ऐसे हकूक दिए गए? उनको तो नहीं मैं लड़ते हुए देखती। मैंने यहीं से पता चलता है कि औरत किस कदर ना समझी का मुजाहरा करती, जब कहती मुझे इनके बराबर हकूक दो, तो फिर हकूक दिए गए, आओ फिर बाहर आओ कमाओ, तुम भी उसी तरह पिसो जैसे आदमी पिसता है, उसी तरह बॉस की झिड़कियां सहो जैसे आदमी सहता है, उसी तरह वर्क की टेंशन लो जैसे आदमी सहता है, और फिर ठीक है तुम भी ऐसे ही रहो। तो इस्लाम ने जो हकूक दिए हैं औरत को वो अदल पे मबनी है, उनमें कोई कमी नहीं है। अगर इसमें कमी करेंगे जो अल्लाह ताला ने हकूक दिए हैं वो भी गलत है, अगर इजाफा करेंगे वो भी गलत है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बारे में बेहतरीन जानता है, जिसने पैदा किया कब वो ही ना जाने। सूरह मुल्क में यही तो कहा गया, जिसने पैदा किया क्या वो ही नहीं जानेगा। तो दूसरे ये कि यहां पर जो औरत की गवाही है, जो आदि करार दी गई है, ये भी तो देखें ये कौन से मामलात में दी गई है। ये माली मामलात हैं। आपको पता है माली मामलात की तरफ औरत की तवज्जो कम होती है, इसी वजह से आप देखें खुदा ना खास्ता जब किसी औरत का हस्बैंड फौत हो जाता है और उन औरतों से पूछा जाता है जी बैंक में कितना है, या क्या आपके हस्बैंड के बिजनेस के थे, क्या उनके पासवर्ड्स हैं, कहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उस बेचारी को कुछ नहीं पता होता। क्यों? इसलिए कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती उनकी ज्यादातर। दूसरी, औरत के लिए, यानी ये उसका फील्ड नहीं है, ये कहने का मकसद है, औरत के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर, सारा दिन वहां की ख्वारी, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। कि अगर उसको गवाह बना दिया जाता और इस तरह से ही उसके ऊपर ही डाल दिया जाता तो उसके लिए मुश्किल होता, क्योंकि जाहिर है वो घर को देखती है, बच्चे उसके साथ हैं, कभी प्रेग्नेंट है, कभी उसके और मसाइल हैं। आपको पता है वो कला बयान करते हैं कि 95% केसेस में जब औरतों को गवाही के लिए बुलाया जाता है तो या तो वो रो पड़ती हैं या घबरा जाती हैं, क्योंकि जब जाहिर है वो कूद कूद के पड़ते हैं, वकील उनके ऊपर जिरह करते हैं तो वो घबरा जाती हैं, फिर कभी इधर की कभी उधर की बोलना शुरू हो जाती हैं या कोसना शुरू कर देती हैं, फलाने को बदुआएं, फलाने को ये। इसके मुकाबले में कहते हैं जब मर्द को गवाह बनाया जाता है वो जाहिर है जुर्रत के साथ खड़ा होता है, वो डरता नहीं है, दबाव में नहीं आता, मुतासिर नहीं होता, और वो ज्यादा ठीक गवाही देता है। तो अल्लाह ताला ने औरत को तो इससे बचा लिया कि वो अब मतलब एक ऐसी चीज जो पैनिक कर सकती है, जो घबराहट में उसको मुब्तला कर सकती है, उससे उसको बचा लिया। लेकिन औरतें कहती नहीं, हमें तो बराबर की गवाही होनी चाहिए। और ये कोर्ट कचहरियों के मामलात आसान नहीं होते, बार बार जाना पड़ता है, बार बार पेशियां में गवाहों को बुलाया जाता है, इतना प्रेशर औरत के लिए कितना मुश्किल है। तीसरी बात, जिन उमूर में औरत का ज्यादा इंटरेस्ट है या जिनका वो ज्यादा ध्यान रखती है, उनमें याद रखें एक बात कि कोई आपको इस चीज के ऊपर मुतासिर ना करे, आपको यह समझ होनी चाहिए कि उन मामलात में जो औरत के फील्ड के हैं उनमें एक औरत की गवाही भी काफी है, एक औरत भी गवाह है तो वो काफी है, उसमें नहीं कहा जाता कि दो। यानी ये माली मामलात हैं जिनके अंदर ऐसा कहा गया, या फिर जिना का है उसके अंदर भी देखें गवाही देनी है तो वो दो औरतों की, वो एक बहुत सेंसिटिव मामला है, कोई किसी के ऊपर जिना की तोहमत लगाए तो ऐसे ही नहीं जा सकता, उसमें चार मर्दों की गवाही जरूरी है, चार मर्दों की, कि हमने देखा है आंखों से। उसमें अब आदमी तो नहीं खड़े होके कहते क्यों मैं एक ही काफी था, या दो दो की गवाही हर जगह होती है, इसमें चार क्यों कर दिया गया, मुझे एक को दो के बराबर किया गया, मेरी गवाही काफी नहीं थी, ये नहीं वो कहते। अब किन मामलात में औरत की अकेली की गवाही काफी है, मसलन रजात का मामला है, बुखारी में रिवायत क्या है, हजरत उकबा बिन हारिस जो थे वो बयान करते हैं मैंने एक औरत से शादी की, तो जब शादी की तो एक और औरत आई और उसने कहा मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया। तो ये मक्का में थे, ये मदीना तशरीफ लेके गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके ये वाकया अर्ज किया कि ऐसे ऐसे वो औरत कह रही है कि मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया, तो क्या मतलब हुआ कि तुम तो रजाई बहन भाई बन गए, तो तुम तो नहीं रह सकते एक साथ, तो अब क्या किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अच्छा वो एक औरत ही है ना, उसकी तो गवाही आधी है, कोई और औरत लेकर आए साथ तो फिर पूरी होगी। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अब उस औरत को कैसे अपने निकाह में रख सकते हो जबकि ये शहादत हो चुकी है, अब इस औरत को तलाक दो, तुम्हारा निकाह नहीं रह सकता। तो समझ आई, एक औरत की गवाही के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया। तो यहां हमें पता चलता है कि एक औरत की गवाही भी काफी है, जबकि वो औरत जाहिर है मुसलमान होनी चाहिए, और भी और उमूर हैं जिनके अंदर एक औरत की गवाही काफी है, मसलन इद्दत के मसाइल, आपने पढ़े हैं इद्दत के मसाइल, उसमें वो औरत ही बताएगी कि मेरी इद्दत खत्म हो गई कि नहीं, हैज के नफास के मसाइल, उसमें वो बताएगी कि मेरे हैज कब खत्म हुआ, कब नहीं हुआ, कब शुरू हुआ, उसके ऊपर सारी इद्दत है, हमल उसका है नहीं है, वो हामिला है नहीं है, वो औरत बता रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया छुपाओ नहीं अपने हमल को, वो खुद ही गवाही देगी ना, उसमें किसी आदमी को नहीं बताया बुलाएगा कि पहले आदमी भी आके गवाही दे के ये हामिला है कि नहीं। इस तरह एक केस हो गया था जो रेप का केस था, उसमें उसने खुद कहा, तो जब उसकी गवाही मानी गई उस लड़की ने मरने से पहले, उसने खुद बताया कि ये है जिसने ऐसा किया, तो वो एक ही गवाही थी। अब ये फौरन उठ के कहते हैं लो जी अगर कोई रेप हो जाए तो क्या वो उसके लिए इस तरह है, वो आप सूरह नूर में पढ़ेंगे सारी बातें। तो ये लोगों के दिलों में मैल डालने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, और हमें समझना चाहिए कि इस्लाम के हर कानून में औरत के लिए खैर ही खैर है। आज बाज जगहों पर औरत को मर्द से भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे खानदानी सिस्टम तबाह हो गया। जैसे कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे कि जब अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तो आधा आधा दोनों का होना चाहिए, जितनी प्रॉपर्टी सारी आदमी की थी वो आधी आधी हो जाए, या जितना माल था वो आधा आधा होना चाहिए अब वो औरत को भी दे। उससे क्या मुसीबत पड़ी कि अब कोई आदमी शादी नहीं करना चाहता, वो कहता है कि मैं इसके साथ वैसे रहता रहूं शादी नहीं करूंगा, क्या पता कल को तलाक देने का वक्त आ जाए तो ये तो सारा ही मेरा माल लेके चली जाएगी। औरत मुसीबत में पड़ी कि उसके लिए कोई खैर हुई, खुद सोचें कि कितनी बड़ी एक मुश्किल में पड़ गई कि कोई शादी ही नहीं करना चाहता, वैसे उससे फायदा उठाता रहे, उससे बच्चे पैदा करता रहे, लेकिन शादी नहीं करेगा। तो इन लोगों ने अपने लिए खुद मुसीबतें पैदा की हैं इसकी वजह से। इस्लाम का जो निजाम है वो भलाई के ऊपर मबनी है, और इसमें सबकी खैर ख्वाही है। लेकिन अगर हमें ये यकीन हो तो फिर है ना, कि हमें ये ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, ब्लाइंडली हमें ये यकीन होना चाहिए कि इस्लाम की हर बात सही है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया अंतुदिल्ला एहदाहुमा फतुज़क्किरा एहदाहुमल उखरा, अगर एक थोड़ा घबरा जाती है, उसको कोई भूल हो जाती है, अगर वो फिसलने लगती है तो दूसरी फिर याद दिला दे, इसके लिए दो की गवाही कही गई। और माली मामलात में मैंने आपको बताया औरत का भूल जाना ये एक कॉमन सी बात है, अब वैसे भी भूल जाते हैं, कितने पैसे किसको दिए थे, पता नहीं इतने दिए थे कि इतने दिए थे। वैसे भी अगर आप लड़कियों से किसी जगह पे भी बात करें ना, वो कहती हैं मैथ हमारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, हमें लगता है हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, आदमी ज़्यादातर फाइनेंस अकाउंटिंग इनके अंदर आदमी ज़्यादा तेज़ होते हैं। वला याब शुहदा उदा मा दुऊ, और ना इनकार करें गवाह जब वो उनको बुलाया जाए, जब वो बुलाए जाए तो वो इनकार ना करें, यानी जब गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। देखें वैसे गवाह बनने के लिए जाना ये जरूरी नहीं हर एक के लिए कि हर एक ही गवाह बनने के लिए खड़ा हो जाए, ये फर्ज किफाया, यानी अगर दो लोग चले गए हैं, दो आदमी गवाह बनने के लिए तैयार हैं तो काफी है, अब बाकियों के ऊपर कोई गुनाह नहीं कि तुमने भी गवाह बनना था जरूरी। लेकिन जब वो गवाह बन गए हैं और जब उनको बुलाया जाए कि आप आके गवाही दें कि वाकई इस तरह से था, तो फिर उनको उसके लिए हाजिर होना चाहिए। वला तसअमु अन तक्तुबू सगीरन ओ कबीरन, ये अगला जुमला है, अब पिछला सिक्स जुमला हो गया, अब आप अगला जुमला देखें कि ना सुस्ती करो कि तुम लिखो उसको छोटा हो या बड़ा, इला अजली, एक फिक्स टाइम पीरियड तक, कि तुम लिखने को ना बोझ ना समझो, इसको कुताओ ना कि जो है ना क्या मुसीबत है कि हमें लिखना पड़ रहा है। ओके बाद में ये नहीं होता कि कोई किसी की नीयत खराब हो जाती है, जरूरी नहीं है, दोनों ही बहुत ईमानदार हैं, लेकिन एक भूल गया, ये मैंने कितने पैसे दिए थे, या आपको मैंने मसलन 2 लाख दिए थे, आपने अपनी 2 किस्तें अदा कर दी हैं, नहीं मैं सोच रही हूं कि नहीं एक दी है आपने, एक ही मुझे दिया, मैं 2 तो दी ही नहीं है,
आप कहते हैं दो दे दी थी मैंने, याद नहीं आपको फलां वक्त में। अब एक कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। अब इसके अंदर किसी की भी इल इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि भूल इंसान के साथ है तो ये हो सकता है, और फिर दिल मैले होते। अब एक इस पे बजिद है कि नहीं मैंने दो किस्तें दे दी थी, दूसरा कहता नहीं एक ही दी थी, तो ये मामला फिर खराब हो जाते। इसलिए तुम लिख लो, छोटा हो या बड़ा, मान ली मामलात में लिखने से इंसान के लिए बहुत फायदा है। ये ना सोचो छोटी सी तो रकम है इससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं छोटी भी लिख लो, क्योंकि बाद में वो छोटी ही जो है ना आपको प्रॉब्लम देगी और आप कहेंगे इसने वापस नहीं किया अभी तक। ज़ालिकुम अक्सतु इंदल्लाह, ये ज्यादा इंसाफ वाली बात है अल्लाह ताला के नजदीक, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि किसी हकदार को हक से महरूम ना किया जाए, ना वो नुकसान उठाए देने वाला ना लेने वाला नुकसान उठाए। वह अकवामु लिशहादती, और ज्यादा दुरुस्त है, ज्यादा दुरुस्त है इस चीज के अंदर, दुरुस्त बात है कि इससे सारे अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं बेहतर तौर पर, इससे किसी के लिए ज्यादती नहीं होती, गवाही के लिए भी ज्यादा दुरुस्त है। वो अदना अल्लाह तरता दो, और ज्यादा करीब है इससे कि ना तुम शक में पड़ जाओ, जैसे मैंने आपको कहा कि बार दफा इंसान को शक ही हो जाता है। अब देखें ये ज्यादा इंसाफ वाली भी है, ये ज्यादा दुरुस्त भी है, जब लिखी हुई चीज मौजूद हो, यानी क्या चीज कि ये लिखी हुई चीज होना और इस पे गवाह बना लेना, ये जालिकुम का इशारा किस तरफ जा रहा है, इन बातों की तरफ कि ये सारा इस तरह से करना जो बताया गया है, ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करना ज्यादा इंसाफ वाली बात है, ज्यादा दुरुस्त बात है गवाही के लिए, यानी शहादत को भी कायम रखने में ये ज्यादा बेहतर है और ज्यादा करीब है इससे कि तुम शक में ना पड़ जाओ। इल्ला अंतकुना तिजारतन हादिरतन, अब ये सारी बात जब आपने ये कहा ना पीछे, या यो लदीन आमनु इजा तदायन तुम भी दई ने इला अजल मुसम्मा, तो उसकी सारी प्रोसीजर बताया गया कि जब तुम बाहमी लेन देन करो दईन का, तो उसके लिए ये चीजें हैं, और उससे आगे ही अगर हम यहां से पढ़ें इल्ला सिवाय, अब ये सारी चीजें ओमिट हो जाती हैं अगर ये एक्सेप्शन है कि अन तकूना के हो तिजारतन हाजिरतन, कि तिजारत हाजिर अगर नकद है तो फिर इस सारे की जरूरत नहीं है। उस सारे की जरूरत कब थी, जब इजा तदायन तुम बिदैनी, ठीक है, तो वो सारा उसके अंदर कवर हुआ अल्लाह तरताबू तक। एक्सेप्शन क्या है कि इस सब की जरूरत नहीं अगर नकद है, यानी नकद मामला है तो फिर जरूरत नहीं है, कि जरूरी नहीं कि आप लिखत पढ़ो करो। आपने एक हाथ से मतलब सौदा दुकान पे गए, इधर से लिया उधर पैसे पे किए और आप आ गए, उसमें भी अगर आज जैसे यहां पर होता है कि आप दुकान पे जाते हैं वो आपको कैश रिसीट देते हैं, चाहे आपने $1 की भी चीज ली हो तो वो भी अच्छा है, मगर लाजिम उसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें वापस रिटर्न कभी चीज करनी होती तो फिर वो रसीद में आ जाती है। तो दी रूना बैनकुम, तुम लेन देन करते हो इसका आपस में, यानी ये तो तुम इसका दौर चलता रहता है, आपस में लेन देन करते रहते हो नकद का जो है, कि इस हाथ दे उस हाथ ले, तो फिर उसके अंदर कोई ऐसा मुद्दत का तायुन करना कि इस वक्त देना है सब, तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं है। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्लाह तक तो बुहा, तो फिर तुम पे कोई गुनाह नहीं है कि तुम लिखो। तो वो जो ये सारी चीजें यहां से शुरू हुई थी, जिससे स्टार्ट हुई ये आया इजा तदायन तो बिनेन इला अजले मुसम्मा फक्तुबुहु, और उसके बाद सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी, अब इसकी जरूरत नहीं है अगर नकद सूरत है, ठीक है। वह अशीदु इजा तबाया तुम, और जब भी तुम सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, यानी वैसे सौदा करना हो तो फिर कोई मसलन कोई ऐसी चीज आपने तजारती मामलात करने हैं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं आप,
मसलन आप घर खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सारी कर्ज की चीजें होती हैं, उसमें गवाह बना लिया करो। वला युदौरा कातिबुं वला शहीद, ना तो जरर पहुंचाया जाए, पहले इसको इस तरह से देख लेते हैं जो कि मजहूल है, ना पहुंचाया जाए कातिब को और ना शहीद को। यानी कातिब को आपने कुछ डरा धमका के और कुछ लिखवा लिया, या गवाह को कह दिया कि अब तुमने गवाही का वक्त आया, तो तुमने ऐसे बोलना है, ये कहना है, या आप गवाह को रोज रोज बुला रहे हैं, उसका हरज हो रहा है काम कारोबार का, और उसको पैसा भी उसका लग रहा है, सफर करके वो आ रहा है, अब आप उसको मुसीबत में डाला हुआ है, ठीक है, तो किसी किस्म का भी, किसी को भी इन दोनों में से नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वला यदौर कातिबुन वला शहीद, और ना जर पहुंचाएं कातिब और ना ही शहीद, ये मारूफ, इसको अगर लेंगे, मजहूल नहीं लेंगे, तो फिर ये मामला हो जाएगा कि कातिब और शहीद ना नुकसान पहुंचाएं। किसको ना नुकसान पहुंचाएं? उन दोनों को, जो कर्ज देने वाला और लेने वाला ना, उनको ना नुकसान पहुंचाएं। इसलिए कातिब भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो लिखने में कहीं गलती कर देता है, एक जीरो ऐड कर दिया या एक कम कर दिया, या फिर वो जो डेट लिखनी थी वापसी की, वो लिखवा रहा है 1 साल, और उसको लिख के दे दिया कि 6 महीने के अंदर ही तुम्हें वापस देना, तो ना नुकसान पहुंचाएं वो इन दोनों को ही, और ना ही गवाही देने वाला कोई नुकसान पहुंचाए कि कोई गलत गवाही दे रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन गवाह वो है जो गवाही देने का वक्त आए तो उसके ऊपर हाजिर हो जाए, वो सबसे अच्छा गवाह है, और बदतरीन गवाह वो है जिसको गवाही के लिए बुलाया भी ना जाए तो वो गवाही देने के लिए खड़ा हो जाता है। यानी ये झूठी गवाही देने वालों की बात है ना असल में, कि वो तो उनको कहा भी ना जाए, वो पहले ही वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि हम देते हैं गवाही। और बेहतरीन कौन है? जो जब भी गवाही देने का वक्त आए तो वो गवाही दे, यह हदीस में आता है। वह इन तफालू, और अगर तुम करोगे, क्या करोगे, ये अगला जुमला है, क्या करोगे, जरर पहुंचाओगे कातिब को और शहीद को, या फिर ये कातिब और शहीद, देखें जरा सा किरात के अंदर थोड़ा सा फर्क, दोनों किरात सही हैं, लेकिन दोनों के फर्क से सभी कवर हो गए, सुभान अल्लाह, ये कुरान का मुजजा है, सब कवर हो गए इसके अंदर, कातिब भी शहीद भी और वो दोनों फरीकैन भी, सुभान अल्लाह। इन आयात वो आप में भी, अगर कभी कोई माली ट्रांजैक्शन, कोई ऐसी चीज आप जिंदगी भर ना करें, लेकिन इस आयत को समझने का अजर आपने पा लिया, और इस पर ईमान रखने का, और इससे आपको इस्लाम का मिजाज पता चलता है कि इस्लाम कितना सेंसिटिव है लोगों के आपस के ताल्लुकात के बारे में, जिस चीज से भी कहीं आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हों, उनका चांस भी हो, उसको कितनी डिटेल में बता दिया गया ताकि कभी भी ऐसा ना हो। वह इन तफालू, अगर तुम करोगे, क्या करोगे, ये जरर पहुंचाना जिसके पीछे बात आई, इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये क्या है, बेशक गुनाह होगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए गुनाह का काम होगा अगर तुमने ऐसा किया, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और ये फिस्क है, तो इसका मतलब है गुनाह करने से इंसान फासिक हो जाता है, मगर खवारिज कहते थे कि काफिर हो जाता है, काफिर नहीं होता गुनाह करने से, फासिक हो जाता है। वत्तकुल्ला, और देख लें अब एंड में भी क्या आया, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करूं, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखाता है, ये तालीम अल्लाह ताला ने दी है, तो इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट होगी, जो अल्लाह ताला ने खुद हमें सिखाई है ये सारी बातें, इसको इस तरह समझ के लें, शायद आपने साइंस पढ़ी है या आपने मैथ पढ़ा हो, शायद कभी जिंदगी में आपको वो फॉर्मूला यूज ना करना हो, लेकिन आपने उस वक्त उसको पढ़ा था। कुरान की आयात इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर आयत, चाहे आप उसको प्रैक्टिस करने का आपको मौका ना मिले, लेकिन हर आयत सीखने का आपको अजर है। और इसको ये ना समझे कि हम कौन सा बाजार में खड़े होके इस तरह से कर्ज ले रहे हैं,
घर लोग खरीदते हैं, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कितने पेपर आपको साइन करने पड़ते हैं, उसमें विटनेसेस के भी साइन होते हैं, उसमें कातिब भी होता है, लॉयर यूजुअली होता है, लॉयर उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी होता है, सब जिन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, फिर सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह से ही होना चाहिए, जबानी कलामी जब चीजें होती हैं तो फिर उसमें ताल्लुकात फिर खराब होने के चांस होते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, और ये बातें तुम्हें अल्लाह ताला सिखा रहा है, वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, इस पे ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। कौन ऐसे कह सकता है कि मैं हर चीज का जानने वाला हूं? अगर ये कोई नहीं कह सकता तो उसको क्या हक ये पहुंचता है कि वो ये कहे कि औरतों के साथ ज्यादती की गई, ये तो आधी गवाही इनकी रखी गई, एक मर्द की गवाही और दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है, तो इसलिए ये क्या बात हुई? क्या तुम बिकुल्ली शैन अलीम हो? नहीं तो फिर जिसने ये कानून दिया वो तो बिकुल्ली शैन अलीम है, किसी का इल्म कामिल नहीं, उसका इल्म कामिल है। और उसने तुम्हें ये सिखाया है, तो इसका मतलब सीखना जो होता है ना, इल्म लेना, इल्म का मिल जाना, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, और अल्लाह ताला ही सिखाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला से मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, अल्लाह मुझे सिखा दे। अब एक और सिनेरियो है कि अगर इंसान सफर पे है और फिर वो कोई कातिब नहीं पाता, कोई लिखने वाला नहीं पाता, तो फिर क्या करे? व इन कुंतुम आला सफरिन, और अगर तुम हो सफर पर, वलम तजिदु कातिबन, और तुम ना पाओ लिखने वाला, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट यहाँ पे बताया गया, फरिहानु मकबूदा, तो फिर तुम रहन रख दो कब्जे की हुई चीज को, कब्जी की कब्जा की हुई को, उसको रहन में रख दो। रहन क्या चीज होती है? रहन जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी, गारंटी या गिरवी, कोई चीज आप गिरवी रख, मिसाल के तौर पे आपने किसी से रकम कर्ज लेनी है, या किसी को कोई कोई चीज किसी की अदा करनी है, तो अब आपने जो उससे जब लिया कर्ज, आप वो आपको नहीं दे रहा, वो कह रहा क्या गारंटी के तुम मुझे वापस कर दोगे, आप कहते हैं ये मेरी अंगूठी रख लो, इसकी कीमत होनी चाहिए क्लोज टू वो जो आप उससे ले रहे हैं, ये मेरी रख लो, और ये जिस वक्त मैं तुम्हें कर्ज अदा कर दूंगी तो मुझे वापस दे देना, ये होता है रहन, इसको कहते हैं प्लेज कराना। बैंक में भी, बैंक की बात ये नहीं मैं कह रही कि कोई ट्रांजेक्शन सही है या गलत है, मैं ये नहीं कह रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्लेज कराया जाता है कि जी हमारे, हम मसलन इतना लोन आपसे ले रहे हैं तो हम अपना मकान प्लेज करा देते हैं, अब वो बैंक के पास है जब तक कि बैंक को वापस नहीं रकम दे दी जाती। अभी हम सूद और उसके ऊपर नहीं कोई बात कर रहे, वैसे एक बात मिसाल आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो ये बतौर जमानत आप रखवाते हैं कि मैं लाजमी वापस करूंगा, अगर वापस नहीं करता तो वो जब्त हो जाती है, फिर वो चीज वो अपनी मिल्कियत में ले लेता है। इसी तरह आप देखें, आप रेंट पे यहाँ पे लेते हैं तो एक एस्ट्रो अकाउंट, जिनको फाइनेंस वगैरह का पता है, बैंकिंग का सिस्टम कुछ पता है, वो एक एस्ट्रो अकाउंट खुलाते हैं और उसके अंदर वो सिक्योरिटी रखवाते हैं कि अगर इसने ना मसलन किराया दिया तो फिर ये इसका 1.5 महीने का किराया इस तरह सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है। मेरे ख्याल पाकिस्तान में हम इसको पगड़ी कहते हैं या इस तरह से समथिंग, के मतलब उतनी गिरवी रख लेते हैं वो चीज। तो अगर कातिब नहीं है, लिखने की जगह पे यहाँ पे क्या बताया गया? ऑल्टरनेट रहन रखना, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रहन रखी हुई चीज क्या अब उसकी मिल्कियत बन गई जिसने कर्ज दिया था? नहीं, मसलन है कि आपने मुझसे कर्ज लिया और आपने अपना घर गिरवी रखवाया, तो अब गिरवी रखवाने वाला जिसने गिरवी रखवाया है उसकी जो चीज है आपकी, यानी आपका मकान जो है वो मैं यूज नहीं कर सकती, उसके पेपर जाहिर मेरे पास होंगे लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर सकती, मैं उसको किराए पे नहीं दे सकती, मैं उसको कुछ उससे फायदा नहीं उठा सकती,
वो सिर्फ एक गारंटी के तौर पे मेरे पास रखा हुआ है, या फिर वो एस्ट्रो अकाउंट भी होता है उसके अंदर भी एक्सेस मुझे नहीं होगी अनलेस के आप किराया नहीं देते, तो फिर मैं उसमें से वो ले सकती हूँ। लेकिन अगर जब तक वो वहां पे पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कि उसको कहीं इन्वेस्ट करना शुरू जाऊं, उस पैसे को, उसको पैसे को यूज कर लूं, ये नहीं कर सकते। तो उसका उसके ऊपर कोई इस वक्त तक हक नहीं होता। अगर वो दे देता है वापस, ठीक है, वो वापस चीज, वो मकान आपको वापस मिल जाएगा, आपने अपना कर्ज अदा कर दिया। लेकिन अगर आपने नहीं किया, तो फिर ये जिसने जाहिर कर्जा दिया उसको भी तो कोई गारंटी चाहिए ना, इतना बड़ा उसने पैसा दिया था, तो अब फिर ये वो मकान को जब्त कर लेगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि बैंक्स वगैरह लोगों के घर सीज कर लेते हैं, फिर वो या उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उन्होंने प्लेज कराई होती है वो जब्त कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वापस नहीं लोन दे सके। तो ये है रहन, और आज भी ये इसी तरह से चल रहा है। ऐसे होता है कि चीज इस तरह से रहन रखाई जाती है, लेकिन ये इसका असूल याद रखें कि कोई उस जो जिसके पास रहन रखी हुई है चीज, वो उस चीज से फायदा नहीं उठाएगा। वो पकड़ के उन फाइलों को ही बेच दे जो किसी के उसने रखवाई हुई थी मकान की, ये नहीं कर सकता वो, या उस मकान में जाके रहना शुरू कर दे, वो नहीं कर सकता, या उसको किराए पे उठवा दे, ये नहीं कर सकता। ये फिर सूद होगा, क्योंकि उसने कर्ज दिया था, उसने उस चीज से फायदा उठा लिया। या मसलन किसी ने मेरे पास अपनी रिंग रखवाई, अब मैं उसको पहन के चली जाऊं, तो वो ये क्या होगा, ये फिर सूद होगा, क्योंकि कर्ज दिया था उसको, उसके ऊपर फायदा उठा रहे हैं। समझ आई बात? और ये क्या सफर के लिए ही है या हजर के लिए भी? तो हमें ये हदीस से पता चलता है कि ये हजर के लिए भी आप गिरवी रख सकते हैं। ये सिर्फ सफर की बात नहीं कि अगर सफर में कातिब ना मिले तो फिर है, आप हजर में भी यानी सफर के बगैर भी ऐसे कर सकते हैं। और ये हदीस से कैसे पता चलता है? जब नबी अलैहिस्सलाम जब उनकी वफात हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेरा जो थी वो मदीने की एक यहूदी के पास जौ के बदले में गिरवी रखी हुई थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के खाने पीने के लिए लिया था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सफर में नहीं थे और वहां पे कातिम भी थे। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमें ये पता चला इस बात से कि अगर नहीं भी लिखा गया तो भी उसका ऑल्टरनेट हमें मिल गया कि रहन भी चीज रख के कर्ज लिया जा सकता है। अगली बात जो है ये हमें बताएगी कि ये जो पिछली आयत में हमने पढ़ा वो जमहूर उलमा मेजोरिटी उलमा कहते हैं कि वो फर्ज नहीं है, वो मुस्तहब है, वो पसंदीदा है। एक ये आयत के इस हिस्से से और एक मैं आपको हदीस बताऊंगी। ये बातें आप लोगों को अब अच्छी तरह याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये सारी आयत समझ में आ जाए, क्योंकि ज़रा लेंथी है और इसमें ऐसे मसाइल हैं, अगेन जो सुनने वाली खवातीन हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रा मुश्किल हो जाता है जब आप वो माली मामलात की चीज़ें पढ़ती हैं, मर्द जो सुन रहे होंगे उनके लिए शायद आसान हो। वह इन अमीनाबादकुम बादन, फिर अगर अमन हो, अमन में हो, यानी अमन में हो मतलब क्या, इत्मीनान हो उसको, इसका यकीन है, एतबार है, बादुकुम बादा यानी देने वाले को पता है नहीं ये मेरा भाई है, ये पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, मुझे पता है ये इतना ईमानदार है ये मुझे वापस देगा। फल यू अदिल्लदी तो मीना अमानता हो वलियत्तकिल्लाह रब्बा, तो चाहिए कि अदा करे वो शख्स, कौन शख्स, जो अमीन बनाया गया, जो अमानतदार बनाया गया, जिसके पास अमानत है। क्या है वो कर्ज जिसने लिया हुआ है, इसकी अमानत का अमानतदार बनाया गया, पर चाहिए कि वो अदा कर दे। मतलब वो भी फिर ये सोचे कि इसने मेरे ऊपर भरोसा किया, इसने मेरे ऊपर यकीन किया, मैं सही सही ये वापस कर दूं। अब देखें पहले आया था ना किताबत करो, गवाह बनाओ, यहां पे क्या आया है कि किताबत नहीं हुई तो रहन, लेकिन अब रहन भी आपको एग्जेम्प्ट है, अगर रहन की कोई चीज ही नहीं है या वैसे ही एतबार है, वो कहता है मुझे रहन की कोई चीज तुमसे लेनी ही नहीं है, मुझे आपके ऊपर एतबार है जी, मुझे ना लिखवाना है, ना मुझे गवाह बनाना है, ना मुझे कुछ करना है, वो मुझे आपके ऊपर ये यकीन है कि आप देंगे। तो फिर चाहिए कि वो जिसको अमीन बनाया गया है, जो मकरूज है, वो उसका उसके ऊपर इसने एतमाद किया है, तो उसको भी चाहिए कि वो अमानत को अदा कर दे, कर्ज को अदा कर दे, वक्त पे अदा कर दे, वापस कर दे, और चाहिए कि अल्लाह का डर रखे जो उसका रब है। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि उलमा कहते हैं कि आप लिखवाते हैं और गवाह बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में तो करना ही चाहिए, जो जिनकी आपको ये पता है कि इनके ऊपर भूल हो सकती है, या कोई ऐसे लोग हैं आपको नहीं पता है भाई, है आप बेचते हैं मकान, आपको क्या पता जो खरीदने वाले हैं वो कैसे हैं, उनका किरदार क्या, अखलाक क्या, कल को ये मुकर जाए वो मुझे ना दें पैसे, वहां पे सब जगह पे लिखा जाएगा। लेकिन बाज ऐसी जगह होती हैं आपको इतना इतमाद होता है, आपको अंधा यकीन होता है, आप कहते हैं कि ठीक है मुझे नहीं है आपसे कुछ रहन चीज रखवानी, या मुझे किताबत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रहन की चीज तब रखवाई गई थी जब किताबत नहीं कर रहे थे, तो रहन उसकी जगह पे उसको ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रहन नहीं रखा तो इसका मतलब किताबत भी नहीं हुई, रहन भी नहीं हुआ, और गवाह भी नहीं है, या गवाह हैं भी तो फिर भी तब भी अगर एतमाद है तो ये उस एतमाद को के ऊपर पूरा उतरे और अदा करे। ये मैंने आपको इससे बता दी, बाकी आपको मैं हदीस से भी बताती हूँ कि क्यों जमहूर के नजदीक ये जो पिछली आयत में 282 में जो हुक्म आया ये फर्ज नहीं है मगर मुस्तहब है, और इसकी दलील में जो हदीस है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त की और उसका कोई गवाह नहीं था, लिखी भी नहीं थी। मुसनद अहमद में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू से घोड़ा खरीदा और बद्दू आपके पीछे पीछे आपके घर की तरफ रकम लेने के लिए चला, आपसे सलाम जरा जल्दी जल्दी चल रहे थे तो आगे निकल गए, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा था कि आपसे जाके वहां पे रकम। अब ये दईन का मामला हो गया ना, समझ आई ना, कर्ज जरूरी नहीं कर्ज ही हो, मसलन आपने किसी चीज खरीदी है, अभी मैं आपको देती हूँ इसकी रकम, तो अभी देती हूँ मसलन मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जाके देती हूँ, घर में पैसे पड़े हैं, अब वो पीछे पीछे आ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे थे। अब लोगों को तो नहीं ये पता था कि ये घोड़ा बिक गया, अब वो जब लेके चल रहा है घोड़े को तो उन्होंने कीमत लगानी शुरू कर दी, यहां तक कि जितने दामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उसने बेचा था उससे ज्यादा दाम लग गए। अब वो बद्दू की नीयत पलट गई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे के कहा, या तो आप इसी वक्त नकद लेके ये घोड़ा लें या मैं किसी और के हाथों बेच रहा हूं। अब हमारे साथ कई दफा ऐसे होता है ना कि हम किसी साथ सौदा कर लेते हैं, उसके बाद हमें मसलन वो चीज उससे भी सस्ती मिल रही थी, और अभी हमने इसके साथ सौदा कर लिया, वह सिर्फ पैसे देने थे, ये हमें उससे सस्ती चीज मिल गई, तो अब हम वहां से छोड़ के मैंने तो नहीं तुमसे लेना, और उल्टा सीधा उसको करके और फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। हमने किसी से काम करवाना था, उसने हमें कुछ महंगा बताया, हमने उससे सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बस तुम कल कल से शुरू कर दो, और उसके बाद कोई और आ गया और उसने कहा मैं तो इतने कम में कर दूंगा, अब आप उससे आपने ये नहीं सोचा कि मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वह, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं था और आप पलट गए, तो इसी तरह उस बद्दू ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के रुके और फरमाया तुम तो इसको मेरे हाथ बेच चुके हो, फिर ये क्या कह रहे हो? उसने कहा नहीं अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गलत कहते हो, मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला हो चुका है। आप देखे ना, मामला तो हो चुका था, सिर्फ पैसे देने रह गए थे। आप देख लें कि कितना लोग पलट जाते हैं इस तरह से, इसी को रोकने के लिए ये आयत उतरी है, ये लोग फिर बाद में मुकर जाते हैं, हम खुद ऐसे करना शुरू कर देते हैं। अब इधर उधर से लोग बीच में बोलने पड़ लग गए, उस बद्दू ने कहा अच्छा अगर मैंने आपको बेचा है ना, गवाह लेकर आए इसका कि मैंने आपको बेच दिया था। अब मुसलमान जो थे उन्होंने कहा बदबख्त तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि गवाह लेकर आए, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, आपकी जुबान से तो सिर्फ हक निकलता है, लेकिन वो बस यही कह रहा था अच्छा फिर गवाह लाओ ना, गवाह लाओ ना। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसा कर सकता तो किसी को भी कर सकता है, अब नबी अलैहिस्सलाम पे भी कोई ऐसे बात बना सकता है तो और कौन भी रह गया। इतने में हजरत हुजैमा रजी अल्लाह तआला आ गए, उन्होंने जब आरबी के इस बात को सुना तो फरमाने लगे मैं गवाही देता हूं कि तूने बेचा है इनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में बेचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कैसे गवाही दे सकते हो? हजरत हुजैमा ने फरमाया आपकी तस्दीक और आपकी सच्चाई की बुनियाद पे मैंने ये गवाही दी है। यानी आप तो कुरान लेकर हम तो उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, ये क्या बात, ये क्या चीज है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से हजरत खुज़ैमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है। तो इस हदीस से पता चला कि ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रांजेक्शन की थी और कोई गवाह नहीं था, लेकिन एहतियात इसी में है कि तिजारत पे भी गवाह हो जाए, जो भी मामला आपका हो उस पे भी गवाह हो जाए। और एक हदीस से भी हमें पता चलता है, जो इब्ने मर्दवे की भी है और हाकिम की भी। अब इब्ने मर्दवे, आप देखें ये बातें जब मैं आपको बोलती हूँ ना किसी किताब का नाम, तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए। मर्दवे कैसे कहते हैं? मीम रा दाल वाव या हा, हलवे वाली नहीं, दूसरी। तो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अब आपने मर्दू या ये ऐसे नहीं बोलना, वरना कोई सोचेगा कि इसके पास कोई समझ नहीं है, क्योंकि इसको तो हदीस की किताब का नाम भी नहीं लेना आता। तो इब्ने मर्दवे, इस तरह नसाई, नीसाई नहीं, नसाई, इस तरह मुसनद अहमद, हाकिम, ये मुअज्जम, ये हदीस की किताबें हैं। तो उसमें है कि तीन शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन दुआ नहीं कबूल की जाती। मैंने वो फरियाद करते हैं, हालांकि वो मजलूम है, आपको पता है मजलूम की दुआ तो फौरन कबूल होती है, अल्लाह ताला के अर्श तक जाती है, लेकिन ये मजलूम होते हुए भी इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। क्यों? इसलिए कि वो कोई वजह है, उनके पास कोई इख्तियार था लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। नंबर वन, वो जिसके घर में बद अखलाक औरत हो, उसकी बीवी बद अखलाक है, बुड़बुड़ाती है और तंग करती है उसको, और वो उसकी शिकायतें तो हर वक्त करता रहता है लेकिन उसको तलाक नहीं देता। भाई तुम्हारे हाथ में है कि तू फिर ठीक है, फिर खत्म कर दो, लेकिन बस उसके साथ रहना भी है और साथ उसकी बद अखलाकी के रोने भी रोते रहना, उसकी नहीं सुनी जाती चाहे ये वो कुछ भी कहता रहे। दूसरा वो है जो किसी यतीम का माल उसकी बलूगत से पहले उसको सौंप देता है। अब वो यतीम बालिग तो था नहीं, अब उसने माल को जब जाया किया तो फिर ये रोता फिरता है, देखो जी मैंने इसको ये दिया था और इसने देखो ऐसे कर दिया, तुम्हारा कसूर था ना, जब वो बालिग ही नहीं तुमने उसको क्यों दिया, अब तुम फरियादे करो, अल्लाह करे ऐसा हो जाए वो हो जाए, वो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं, इस मतलब तुम्हें कोई बात नहीं तुम्हारी सुनी जाएगी। तीसरा वो जिसको माल, जो माल कर्ज पे दे और गवाह ना रखे, ना गवाह रखे, ना उसने किताबत कराई, ना उसने कुछ कराया, और उसके बाद फिर जब उसको नहीं मिलता वापस, और फिर अब वो कहता है कौन सा कर्ज और कौन सा वो, जाओ अब, या तुमने तो मुझे इतने का दिया ही नहीं था, या तो तुमने इतनी तो मेरे से ये वाली बात की ही नहीं थी और जब सारी बात की भी है, तो अब ये रोता भी फिरे, अल्लाह करे इसको ऐसे हो जाए, इसका माल गारत हो जाए, फलां हो जाए, अब उसके बाद है तो ये मजलूम लेकिन इसकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। क्या वजह है, क्यों नहीं सुनी जाएगी? इसलिए क्योंकि जब इसको अल्लाह ताला ने अहकामात दिए कि तुम ये करो, फिर ये नहीं करता, तो फिर अब इसकी क्या, तुमने खुद ही अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ा है ना, तुमने खुद ही इन रूल्स पे अमल नहीं किया, तो फिर अब फरियाद करने का क्या फायदा। वला तख्तुमुश शहादा, और ना तुम कितमान करो शहादत का। कितमाने शहादत क्या होता है? छुपा लेना गवाही को। अगर तुम्हें पता है कि ये मामला ऐसे है, तुमने विटनेस किया था, और अब जब तुम्हें खड़ा किया जाए कि बताएं आपके सामने ये हुआ था, तो आप मुकरी जाएं, छुपा ही लें, तो ये मत करो, इससे मना किया गया। झूठी गवाही कबीरा गुनाह है, गवाही को छुपा लेना ये गुनाह का काम है। वमन यकतुमहा फइन्नहु आथिमुन क़ल्बुह, जिसने छुपा लिया उसको तो बेशक वो गुनाहगार है दिल उसका, यानी उसका दिल गुनाहगार है, इसलिए कि दिल में छुपाई है ना उसने। यानी बहुत सारे गुनाह होते हैं, लेकिन बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो कि इंसान इरादतन करता है, इरादतन होते हैं। अब वो पता भी है लेकिन मुझे क्या पड़ी हुई है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बताऊं, खुद ही निपटे। तो मत छुपाओ गवाही को, क्योंकि जब गवाही की जरूरत कब पड़ेगी, उस वक्त पड़ेगी जिस वक्त कोई मामला खराब हो गया। अब लाके गवाह को खड़ा किया, वो कहता जी मैं मुझे तो नहीं पता, मैं क्या जानू, वो मुकर ही गया, उसने छुपा ही ली गवाही। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको खूब जानने वाला है। अगर कोई गवाही छुपाता है, अल्लाह ताला को उसका भी पता है। अगर कोई किसी पे ज्यादती कर रहा है, उसका भी पता है। कोई किसी का हक मारता है, उसका भी पता है। चाहे कर्ज देने वाला, चाहे कर्ज लेने वाला, चाहे जिसको चीज बेची गई, चाहे जिसने खरीदी, अल्लाह ताला सबको जानता है। और पता चल गया कि दिलों की बातों को भी अल्लाह ताला उस दिन निकाल लेगा। वो दिलों की बातों को भी जानता है, क्योंकि इस गुनाह की जड़ दिल में है, उसने दिल में सोच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दिल के बारे में फरमाया था ना कि जिस्म में एक लोथड़ा ऐसा है, वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, और वो उसको रोग लग जाता है ना, वो गलत हो जाता है, सारा जिस्म ही बीमार हो जाता है। वो दिल है, दिल में ही पहले गुनाह के प्लान आते हैं, दिल में ही पहले बातें आती हैं, दिलों में ही कीने होते हैं, दिलों के अंदर ही हसद होते हैं, दिलों में बोझ होते हैं, फिर आगे उनकी शूट्स होती हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं, जो कहीं झूठ, कहीं धोखा, कहीं गीबत, कहीं चुगली, कहीं ऐब निकालना किसी के, ये सारे इसके शूट्स हैं। आगे इससे मतलब है कि वो निकलती हैं। एक और बात जो यहाँ पे जरूरी बता दूं, वो ये कि जब कोई रहन रखेगा चीज को, मसलन है किसी ने एक गाय रहन रख दी, तो वो गाय अब जिसके पास रहन रखी है, वो उसकी टेक केयर कर रहा है, उसको चारा डाल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ स्पेंड भी तो करेगा, वरना तो मर ही जाएगी। तो उसके ऊपर वो जब स्पेंड करता है, तो उसके इवज में वो उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर खर्च किया। ठीक है, इस तरह घोड़ा अगर किसी ने किसी के पास रखा रहन, तो वो उस घोड़े को जाहिर खिलाएगा पिलाएगा, उसकी निगहदाश्त करेगा, तो अब उसकी सवारी कर सकता है। फिर ये सूद नहीं होगा, फिर इसको ये नहीं कहेंगे कि तुम इससे नहीं फायदा उठा सकते। तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसके अंदर कोई उससे फायदा उठा सकता है, मगर वो उसके इवज फायदा उठा रहा है, उसके बदले में फायदा उठा रहा है जो वो इसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। लेकिन अगर वो गाय मर जाती है, तो अब कसूर किसका? अब क्या वो कहेगा कि भाई तुम गाय प्रोड्यूस करो? नहीं, फिर इसका नुकसान है। लेकिन अगर इसकी नेग्लिजेंस से मरी है, इसकी बेपरवाही से मरी, इसको चारा ही नहीं डाला, इसको पानी ही नहीं डाला, या इसको इस तरह से कोई किया, इसकी कोई सही निगहदाश्त ही नहीं की और वो मर गई, तो फिर इसको जो जिसके पास रखी हुई थी, फिर इसका कसूर है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब मतलब किसी ने किसी पास जेवर रखा था रहन, वो जेवर उसने बहुत हिफाजत के साथ रखा हुआ था, लेकिन वो चोर आए सारा ही ले गए, अब इसका तो कसूर नहीं है, अब ये नुकसान उसका होगा जिसने रहन रखा हुआ था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मामलात हैं जो हमें पता होने चाहिए। बाज दफा हम किसी को पैसे देते हैं, भाई आप जाके वहां पे दे दे, मिसाल के तौर पे यहां से पैसे दिया, आप किस दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान में आप दे दें पैसे। अब वो जा रही थी, उसने बड़ी हिफाजत से रखे, लेकिन वो पैसे चोरी हो गए, तो किसका अब नुकसान है? क्या ये भरेगी जो लेकर गई थी, या वो जिसके थे? तो वो जिसके थे उसका नुकसान हो गया, क्योंकि इसने तो हिफाजत से रखे थे। तो ये सारी बातें समझने की हैं कि इंसान, ये मामलात होते हैं ना जिनसे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे देखे बार बार चूंकि अदल और इंसाफ की बात आई, अदल और इंसाफ, इंसाफ करो और शहादत को ना छुपाओ, खयानत ना करो, झूठी शहादत देना, शहादत को छुपाना कबीरा गुनाह करार दिया गया, बल्कि ये तक कहा गया कि इतना इंसाफ करो गवाही देने में कि आगे आएगा, आप सूरह निसा में पढ़ेंगे, ईमान वालों अदलो इंसाफ के साथ अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील करो, यानी गवाहियां देने में बिल्कुल सीधे रहो, चाहे उसकी बुराई तुम्हें पहुंचे, या तुम्हारे माँ बाप को पहुंचे, या तुम्हारे रिश्तेदारों को पहुंचे, तब भी गवाही में ना छुपाओ और ना ही कोई गलती करो, ना कोई झूठी गवाही दो। तो अल्लाह ताला हमें इन सब आयात के ऊपर सही से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें खुले छुपे तमाम गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें सूद जैसी बुराई से, हमें और हमारी नस्लों को भी महफूज रखे, हिफाजत करे। अल्लाह ताला हर किस्म की जो शर और बुराई हमसे दूर रखे, और जहाँ ये हमने आयात पढ़ी हैं, ये और तमाम जो माली मामलात हैं उनमें और हर आयत पे अल्लाह ताला की हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जैसे अमल करने का हक है अल्लाह ताला वो हक अदा करवाए, और सिर्फ हम पढ़ के और बैठ जाने वाले ना हों। वला तकूनु कल्लदीन कालू समेना वहुम ला यस्माउन, अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया लेकिन उन्होंने सुना कुछ नहीं होता, यानी वो ऐसे हैं जैसे एक कान से गया तो दूसरे से निकल गया, ऐसे हैं वो। तो ऐसे लोगों की मिसाल सुम्मुन बुकमुन है, वो तो गंदे गूंगे बहरे हैं, उनके तो अकल ही नहीं है जैसे, तो इन लोगों की तरह मत हो जाना। अल्लाह ताला हमें ऐसे पढ़ने से महफूज रखे कि जो हम पढ़ें और बस हमारे सर के ऊपर से गुजर जाए और हम अमल ना करने वाले हों, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم